آگے دیکھیے بھائی سبق. فصل فی ما تحل به المطلقہ وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه في إطلاقه. گزشتہ سبق میں صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر ایک شخص نے ایک باندی سے نکاح کیا ہے اور وہ شخص باندی کو طلاق دے دیتا ہے اور عدت کے گزرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے عدت کے اندر رجوع کر لیا تھا اور باندی کا جو آقا ہے وہ اس خاوند کی تصدیق کر رہا ہے اور باندی انکار کر رہی ہے, تو امام صاحب فرماتے ہیں باندی کا قول معتبر ہے, جبکہ صاحبین فرماتے ہیں آقا کا قول معتبر ہے کیونکہ اس وقت باندی کے منافع کا مالک آقا ہے, کیونکہ عدت گزر چکی ہے, لہذا آقا خالص اپنے حق کا اقرار کر رہا ہے, تو لہذا آقا کے قول کو قبول کیا جائے گا. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ رجوع کی بنیاد عدت پر ہے, عدت کے اندر رجوع صحیح ہے, عدت کے بعد رجوع صحیح نہیں, تو لہذا رجوع کا دار و مدار عدت پر ہوا اور عدت کے اندر تو باندی کا قول قبول کیا جاتا ہے, تو جب عدت کے اندر باندی کا قول قبول کیا جاتا ہے تو جس چیز کی عدت پر بنیاد ہو اس میں بھی باندی ہی کا قول قبول کیا جائے گا. اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا کہ مثلا آقا جو ہے وہ خاوند کی تکذیب کر رہا ہے اور باندی تصدیق کر رہی ہے, تو پھر اس صورت کے اندر ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک آقا کا قول معتبر ہے بھائی. وجہ یہ ہے کہ عدت گزر چکی ہے لہذا اب باندی کے منافع کا مالک آقا بن چکا ہے, اور جب آقا اس کے منافع کا مالک بن چکا ہے اور باندی خاوند کی تصدیق کر کے آقا کے حق کو ساقط کرنا چاہتی ہے لہذا اس کو اس کی اجازت نہیں ہوگی, جبکہ اس کے برخلاف پچھلے پہلے مسئلے کے اندر وہاں پر آقا نے اقرار کیا تھا کہ عدت کے اندر خاوند نے رجوع کر لیا ہے, تو جب عدت کے اندر خاوند نے رجوع کیا ہے تو عدت کے اندر تو آقا کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی, تو لہذا وہاں باندی کا قول قبول کیا جائے گا امام صاحب کے نزدیک. پھر اس کے بعد صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ عدت کا وقت کس وقت ختم ہوگا, بتلایا کہ جب تیسرا حیض مکمل ہو جائے گا تو اس وقت عدت کا وقت ختم ہو جائے گا, اور جب عدت ختم ہو گئی تو رجوع بھی منقطع ہو گیا, اب رجوع نہیں ہو سکتا, اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت تو 10 دن ہے, لہذا اگر 10 دن کے پورا ہونے پر حیض کا خون رکا تو اس سے آگے تو حیض کے آنے کا امکان نہیں ہے, لہذا خون کے رکتے ہی عدت کے ختم ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا. اور اگر خون جو ہے وہ 10 دن سے کم میں رکا ہے تو یہ جو حیض کا خون ہے یہ کبھی رکتا ہے کبھی جاری ہوتا ہے, تو جب 10 دن سے کم کے اندر خون رکا ہے تو ابھی بھی احتمال ہے, ہو سکتا ہے کہیں دوبارہ خون نہ آ جائے, لہذا خون کے رکتے ہی فوراً حیض کے ختم ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے, بلکہ کچھ دیر انتظار کیا جائے گا, یعنی یہاں تک کہ باندی غسل کر لے, تو جب غسل کر لے گی تو آپ دیکھو حیض کا ختم ہونا یقینی ہو گیا, اب خون کا رکنا پکا ہو گیا, تو لہذا جب غسل کر لے گی تو اب عدت کے ختم ہونے کا حکم لگایا جائے گا, اب رجوع منقطع ہو جائے گا. یا اب ایک نماز کا وقت گزر جائے, یعنی اس کے ذمے ایک نماز آ جائے, اور نماز تو پاک عورتوں پر آتی ہے, معلوم ہوا جب اس پر پاک لوگوں والا حکم آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے حیض ختم ہو چکا ہے بھائی. جبکہ اگر پانی موجود نہ ہوا اور عورت کو تیمم کرنا پڑا تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حیض کا خون 10 دن سے کم میں رکا اور پھر عورت نے تیمم کر لیا تو تیمم کرتے ہی عدت ختم ہو گئی, کیونکہ تیمم بھی غسل کی طرح طہارت مطلقہ ہے, تو جو غسل کا حکم ہوگا وہی تیمم کا بھی حکم ہوگا, تو تیمم اس کے درجے میں ہو گیا. और 10 दिन से कम खून रुकने के बाद औरत गुसल करती थी तो हम इद्दत के खत्म होने का हुक्म लगाते थे, तो यहां भी 10 दिन से कम में खून रुकने के बाद औरत तयम्मुम कर लेगी तो हम इद्दत के खत्म होने का हुक्म लगा देंगे। जबकि शेखैन रहमहुमल्लाह फरमाते हैं कि सिर्फ तयम्मुम काफी नहीं है बल्कि तयम्मुम भी करे और नमाज भी पढ़े। वजह यह कि तयम्मुम तहारत जरूरिया है, जरूरत की वजह से शरीयत ने इसको तहारत करार दिया है, वरना तो यह हकीकत में तहारत नहीं है, यह तो मुलविस है भाई। ये क्या करता है, इंसान को मैला और आलूदा करता है, तो हकीकत में यह मुलविस है लेकिन शरीयत ने इसके तहारत होने का एतबार किया है जरूरत के वक्त, और जरूरत नमाज के वक्त साबित होगी, नमाज से पहले जरूरत नहीं, जब जरूरत नहीं तो तयम्मुम तहारत भी नहीं। तो लिहाजा ये औरत तयम्मुम भी कर ले और फिर नमाज भी पढ़ ले भाई, चाहे नफल पढ़े चाहे फर्ज पढ़े भाई, तो अब तयम्मुम का तहारत होना जाहिर हो जाएगा और अब हम इद्दत के खत्म होने का हुक्म लगा देंगे। और फिर इसके बाद बाज़ फुकहा फिर फरमाते हैं कि सिर्फ नमाज का शुरू करना ही काफी है, नमाज के शुरू करते ही हम इद्दत के खत्म होने का हुक्म लगा देंगे। जबकि बाज़ कहते हैं नहीं, कि जब तक नमाज पूरी ना कर ले ताकि तयम्मुम के जरिए नमाज का जवाब साबित हो जाए भाई, और इसी को उलमा ने तरजीह दी है भाई कि नमाज जब पूरी कर लेगी तो फिर उसके बाद इद्दत खत्म होने का हुक्म लगाया जाएगा। और अगर औरत ने गुसल किया, 10 दिन से कम में हैज रुका है, औरत ने गुसल किया और अपने बदन में से कुछ हिस्सा भूल गई, यानी उसके बारे में उसको शक आ गया। मैंने आपको बतलाया था कि यहां शक की बात हो रही है, यकीन की नहीं। अगर औरत को यकीनी तौर पर याद है कि मैंने पूरा उज्व या उज्व का कुछ हिस्सा नहीं धोया, फिर तो बिल इत्तेफाक इद्दत खत्म नहीं है जब तक उस हिस्से को न धो ले वो। तो यहां सिर्फ शक की बात हो रही है, तो औरत को शक आ गया एक पूरे उज्व में या उज्व से कम के अंदर, तो बतलाया कि अगर पूरा उज्व या इससे ज्यादा के अंदर शक आया है तो अभी रजअत मुनकते नहीं, और अगर उज्व से कम के अंदर शक आया है तो रजअत मुनकते हो चुकी है भाई। और साहिब हिदाया ने बतलाया ये इस्तेहसान है भाई, और मैंने आपको बतलाया था कि इस्तेहसान उस कियास खफी को कहते हैं जिसके मुकाबले में कियास जली हो भाई, तो यहां भी इसके मुकाबले में कियास जली है भाई। यहां दो कियास हैं, एक इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का और एक इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उज्व अगर पूरा उज्व भी रह जाए तो भी रजअत खत्म हो गई, क्योंकि लिल अक्सर हुक्मुल कुल भाई, क्योंकि अक्सर बदन को तो औरत ने धो लिया है, वलिल अक्सर हुक्मुल कुल, तो यूं समझो गोया सारे बदन को ही धो लिया है, और सारे बदन को धोने की सूरत में तो इद्दत खत्म होती थी, रुजो मुनकते होता था, तो लिहाजा यहां पर भी रुजो के मुनकते होने का हुक्म लगाया जाएगा। तो जब पूरे उज्व का यह हुक्म है तो उज्व से कम का बतरीके औला यह हुक्म होगा कि उस सूरत में भी रजअत को मुनकते करार दिया जाएगा। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जो है वो फरमाते हैं कि अगर उज्व से कम भी शक आ गया तो भी ये हदस है, इसकी तजज्जी नहीं हो सकती, हदस या तहारत की तजज्जी नहीं हो सकती। हदस है तो सारे बदन पर है, और या तहारत है तो सारे बदन पर है, ये नहीं हो सकता कुछ बदन पर तहारत हो और कुछ बदन पर हदस हो भाई। लिहाजा अगर उज्व से कम के अंदर भी शक आया है तो तहारत नहीं आई, मालूम हुआ हदस अभी भी मौजूद है, जब हदस मौजूद है तो अभी रजअत मुनकते नहीं। तो जब उज्व से कम के अंदर रजअत मुनकते नहीं है तो पूरे उज्व में बतरीके औला रजअत मुनकते नहीं है। जबकि इन कियासों के मुकाबले में इस्तेहसान यह है कि पूरे उज्व में और उज्व से कम के अंदर फर्क है। इमाम अबू यूसुफ के कियास के मुताबिक भी पूरे उज्व हो या उज्व से कम हो दोनों का एक ही हुक्म था। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कियास के मुताबिक भी पूरा उज्व हो या उज्व से कम हो दोनों का एक ही हुक्म है, लेकिन इस्तेहसान यह है कि दोनों में फर्क है। वजह यह कि उज्व से जो कम होता है वो हिस्सा जल्दी खुश्क हो जाता है, थोड़ा सा हिस्सा जल्दी खुश्क हो जाता है, लिहाजा ये बात यकीनी नहीं कि इसको पानी नहीं पहुंचा, हो सकता है इसको पानी पहुंच गया हो और जल्दी खुश्क हो गया है, तो लिहाजा इस तक पानी का न पहुंचना यकीनी नहीं। जब पानी का न पहुंचना यकीनी नहीं है, हो सकता है पानी पहुंच गया हो, तो हम क्या हुक्म लगाएंगे कि गुसल हो चुका है, जब गुसल हो गया तो रजअत मुनकते हो गई। जबकि पूरा उस जो है वो तो इतनी जल्दी खुश्क नहीं होता और नीज आदतन उससे इंसान गाफिल भी नहीं होता, बिलखसूस जब वो पाकी वाला गुसल कर रहा है तो उसके बदन की तरफ पूरी तवज्जो होती है कि कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। तो उज्व से काम तो रह सकता है लेकिन पूरा उज्व नहीं रह सकता और ना वो जल्दी खुश्क होता है। तो मालूम हुआ दोनों में फर्क आ गया भाई, उज्व से काम में और पूरे उज्व में फर्क है। लिहाजा उज्व से काम हो तो हम कहेंगे रजत मुनकते हो चुकी है और अगर पूरा उज्व है तो हम कहेंगे रजत अभी मुनकते नहीं हुई भाई। उसके बाद साहिब हिदायत ने चंद मसाइल जिक्र फरमाए थे जहां पर जिमनन और हुक्मन रुजू साबित होता था, जहां जिमनन और हुक्मन रुजू साबित होता था। और मसलन एक शख्स ने बीवी को तलाक दी और यह हामिला है और यह शख्स कहता है मैंने इससे सोहबत नहीं की और उस औरत ने तलाक के बाद 6 माह से कम के अंदर बच्चे को जन्म दिया, हालांकि एक सही सलामत बच्चे की पैदाइश 6 माह से कम में नहीं हो सकती भाई, कम अज कम 6 माह के अंदर एक सही सलामत बच्चे की पैदाइश हो सकती है। और यह औरत तलाक के बाद अभी 6 महीने नहीं गुजरे कि इसने बच्चे को जन्म दिया, तो इस बच्चे का नसब खावन से साबित हो जाएगा। और जब बच्चे का नसब खावन से साबित हो गया, मालूम हुआ खावन ने झूठ बोला था कि मैंने वती नहीं की, क्योंकि नसब तो तभी साबित हो सकता है जब खावन ने वती की हो, लिहाजा शरीयत खावन को झुटला रही है। क्योंकि हदीस में आया है अलवलदुलिल फिराशी कि बच्चा जो होता है वो फिराश के लिए यानी साहिबे फिराश के लिए होता है, इन बच्चा खावन का शुमार होता है। तो बच्चे का नसब खावन से साबित हो जाएगा और जब नसब साबित हो गया तो खावन की वती साबित हो गई, जब खावन की वती साबित हो गई तो अब इस औरत पर इद्दत भी है और इद्दत के अंदर अगर खावन ने रुजू किया था तो वो रुजू भी सही हो जाएगा। और इसके मुकाबले में अगर एक औरत है उसने तलाक से पहले एक बच्चे को जन्म दिया है और ये बच्चा निकाह के 6 माह या इसके ज्यादा के बाद पैदा हुआ है, क्योंकि 6 माह किससे पहले तो सही सलामत बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकती, तो निकाह को 6 माह या इससे ज्यादा गुजर चुके हैं और औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया था तो वो खुद बखुद इसी खावन का शुमार होगा। और बच्चे का नसल जब खावन से साबित हो रहा है, मालूम है खावन ने वती की थी और फिर खावन अब इस औरत को तलाक देता है और कहता है कि मैंने तो सोहबत नहीं की, तो शरीयत खावन को झुटला रही है, लिहाजा इस सूरत में भी खावन को रुजू का हक होगा। अगरचे उसने कहा है मैंने सोहबत नहीं की लेकिन शरीयत उसे झुटला रही है, उसे रुजू का हक है भाई, इद्दत के अंदर वो रुजू कर सकता है भाई। जबकि इसके मुकाबले में अगर एक शख्स ने एक औरत के साथ खलवत की भाई और फिर बाद में कहता है कि मैंने तो इसके साथ सोहबत नहीं की, तो इस यहां पर शरीयत उसको नहीं झुटला रही, लिहाजा इस खावन को रुजू का हक नहीं होगा भाई। इस पर इश्काल होता है कि यहां भी तो शरीयत उसको झुटला रही है, क्योंकि खलवत सहीहा से की वजह से भी पूरा महर खावन पर वाजिब हो जाता है और पूरा महर तो वती की सूरत में ही आया करता है। मालूम हुआ यहां पर शरीयत क्या कह रही है, खावन वती कर चुका है जब भी तो पूरा महर उस पर लाजिम हुआ है, तो उसका भी जवाब दिया साहिब हिदाया ने कि नहीं भाई, ये खलवत की वजह से जो पूरा महर खावन पर वाजिब होता है उसकी वजह वती नहीं होती, बल्कि औरत का अपने आप को सुपुर्द करना है कि औरत ने तो अपने आप को पूरे तौर पर खावन के सुपुर्द कर दिया है, अब वती करना या ना करना वो तो खावन का काम है। तो जब औरत ने मुबदल खावन के हवाले कर दिया तो बदल यानी महर के अंदर भी उसका हक आ गया, वो पूरा महर अब खावन को देना पड़ेगा। तो मालूम हुआ खलवते सहीहा के अंदर जो पूरा महर आता है उसकी बुनियाद सोहबत पर नहीं है बल्कि तस्लीम मुबदल पर है कि औरत ने मुबदल सुपुर्द कर दिया था यानी अपने आप को उसके हवाले कर दिया था भाई। चुनांचे ये शख्स जिसने खलवत की है और कहता है मैंने सोहबत भी नहीं की, बाद में रुजू भी कर लेता है, बाद में रुजू कर लेता है और फिर यह औरत जो है आगे चलकर 2 साल से पहले पहले एक बच्चे को जन्म देती है, यानी तलाक और बच्चे की पैदाइश में 2 साल से कम 1 दिन कम है, ज्यादा हो तो और अच्छी बात है। तलाक देने के बाद 6 महीने के बाद बच्चे को औरत ने जन्म दिया या 7 के बाद जन्म दिया या 8 के बाद जन्म दिया, तो बस 2 साल से कम मुद्दत के अंदर औरत ने बच्चे को जन्म दिया। तो देखो, मैंने आपको बतलाया था कि नसब के साबित करने में बेइंतहा एहतियात से काम लिया जाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चे का नसब साबित किया जाए, वरना तो बच्चा जाया हो जाएगा, हलाक हो जाएगा, कोई उसकी तरबियत करने वाला नहीं होगा, कोई उसको खिलाने पिलाने वाला नहीं होगा। तो लिहाजा यहां पर भी देखो, वो शख्स तो कह रहा है मैंने सोहबत भी नहीं की और तलाक दे दी है, और औरत 2 साल से पहले पहले एक बच्चे को जन्म दे रही है, तलाक के बाद 2 साल पूरे होने से पहले पहले एक औरत बच्चे को जन्म दे रही है, तो इस बच्चे के नसब के साबित करने की सूरत है कि इसको इसी शख्स का बच्चा करार दिया जाए, वरना तो यह बच्चा हलाक हो जाएगा। तो जब 2 साल से एक दिन भी कम है तो वो एक दिन ये तलाक से पहले वाला मिला लेंगे। मालूम है खावन ने तलाक देने से पहले उसने सोहबत की थी और ये बच्चा इसी का है, तो देखो इस बच्चे का नसब साबित हो जाएगा। और ये जो शख्स ने कहा था मैंने सोहबत नहीं की, मालूम है ये झूठ बोल रहा था, लिहाजा इसने अगर रुजू भी बाद में किया था तो इसके कौल के मुताबिक तो रुजू सही नहीं बनता, लेकिन बच्चे की पैदाइश को देखें तो रुजू को सही करार देना पड़ेगा। मालूम हुआ कि यह शख्स रुजू कर ले तो रुजू साबित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो देखो बच्चे के नसब के लिए कितनी शरीयत ने एहतियात की भाई। और इसी तरह मसला जिक्र किया साहिब हिदाया ने, एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने बच्चे को जन्म दिया तो तुझे तलाक है, और फिर इस बच्चे के बाद औरत ने एक और बच्चे को जन्म दिया 6 माह या इससे ज्यादा के अंदर, तो भी शरीयत कोशिश करेगी बच्चे का नसब साबित हो जाए। शरीयत कहती है यह भी उसी खावन का बच्चा है, हालांकि उसने तो नहीं कहा, लेकिन शरीयत कहती है यह उसी का बच्चा है। मालूम हुआ जब पहला बच्चा हुआ था तलाक हो गई, और तलाक के बाद इद्दत आती है, और इद्दत के अंदर खावन क्या कर सकता है? रुजू कर सकता है। मालूम खावन ने रुजू कर लिया था जी। तो यह दूसरा बच्चा, इसका नसब भी किससे शुमार किया जाएगा? इसी खावन से शुमार किया जाएगा। लेकिन ये दोनों मसलों के अंदर, ये वाला और मसला और पिछला मसला, इसमें ये जरूरी है कि औरत ने अपनी इद्दत के गुजरने का इकरार न किया हो भाई दरमियान में। अगर उसने दरमियान में इकरार कर लिया था कि मेरी इद्दत तो गुजर गई है, तो फिर अब तो कोई सूरत नहीं है, ये बच्चा खावन का करार नहीं दिया जा सकता। मालूम हुआ ये बाद में कहीं हमल ठहरा है जिना की वजह से, और उससे ये बच्चा पैदा हुआ है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया, इसी तरह एक खावंद अपनी बीवी से कहता है जब भी तू बच्चे को जन्म दे तो तुझे तलाक है। तो औरत ने बच्चे को जन्म दिया और फिर उसके बाद 6 माह या 8 माह, 10 माह बाद या 1.5 साल बाद उसने एक और बच्चे को जन्म दिया, तो हम कहेंगे कि ये खावंद ने रुजू किया था, ये दूसरा बच्चा भी उसी का है। देखो बच्चे का नसब साबित कर दिया, और लेकिन साथ ही दूसरी तलाक भी हो गई। फिर उसके बाद औरत ने उसके बाद फिर एक और बच्चे को जन्म दिया भाई, तवज्जो है? तो चाहे साल बाद बच्चे को जन्म दे, चाहे 2 साल बाद भी बच्चे को जन्म दे, हम कहेंगे ये उसी खावंद का है। आप कहेंगे भाई 2 साल के बाद कैसे हो सकता है भाई? वजह यह कि इद्दत कभी लंबी हो जाती है, बाज औकात औरत को कई कई महीने तक हैज ही नहीं आता। तो जब तक औरत इकरार ना कर ले कि मेरी इद्दत गुजर गई है, औरत ने अगर यह इकरार नहीं किया तो हम बच्चे का नसब खावन से साबित कर देंगे भाई, क्योंकि नसब के सबूत में बे इंतहा एहतियात की जाती है। तो अब यह जो तीसरा बच्चा पैदा हुआ, यह भी हम यूं ही शुमार करेंगे कि खावन ने रुजू कर लिया था और उसकी वती से यह बच्चा पैदा हुआ है, और फिर इस तीसरे बच्चे पर तीसरी तलाक भी वाकई हो गई। अब तो इसके बाद रुजू की कोई सूरत नहीं है भाई, लिहाजा इसके बाद अगर कोई बच्चे को औरत जन्म देती है, अब यह खावन का शुमार नहीं होगा। और मैंने आपको यह भी बतलाया था कि यह माना नहीं कि अभी औरत बच्चों को जन्म दे रही है और आप खावंद के सर उन बच्चों को डालते जा रहे हैं, नहीं नहीं, खावंद को भी शरीयत ने इख्तियार दिया है, वो क्या कर सकता है? काजी के पास जाकर लियान करके बच्चे के नसब की अपने से नफी कर सकता है, लेकिन यह नफी इब्तदाई दिनों में होगी, जब बच्चे के इब्तदाई दिनों में उसकी जरूरत की चीजें वगैरह खरीदी जाती हैं और लोग तोहफे वगैरह देते हैं बच्चे की पैदाइश पर, तो यह इब्तदाई दिनों के अंदर वो खावंद लियान कर सकता है। बात समझ में आ गई? اور پھر صاحب ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ متعلقہ رجعیہ جو ہے اس کے ساتھ تو خاوند کا نکاح ابھی موجود ہے اور خاوند اس کے ساتھ صحبت بھی کر سکتا ہے اور رجوع کرنا مستحب بھی ہے، لہذا یہ عورت بناؤ سنگھار کر سکتی ہے اور زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے تاکہ خاوند اس کی طرف مائل ہو جائے اور رجوع کر لے. ہاں البتہ خاوند اس متعلقہ رجعیہ کو سفر پر نہیں لے جا سکتا جب تک رجوع نہ کر لے. یہ وجہ یہ کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ ان متعلقات رجعیہ کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. اور سفر پر لے کر جائے گا تو گھر سے نکالنا پڑے گا باہر، قرآن میں واضح منع آیا ہے، لہذا باہر نہیں لے جا سکتا. اور نیز عقلی دلیل بھی صاحب ہدایہ نے ذکر فرمائی. عقلی دلیل یہ کہ طلاق جو ہے وہ مبطل نکاح ہے، تو اس نے جب طلاق رجعی دی ہے، کیا دی ہے؟ طلاق رجعی دی ہے، تو پھر اس کے باوجود خاوند کو رجوع کا حق دیا ہے شریعت نے، اس پر شفقت کرتے ہوئے، خاوند پر شفقت کرتے ہوئے اسے رجوع کا حق دیا ہے کہ کہیں خاوند کو ندامت پیش آ جائے اور وہ رجوع کرنا چاہے، اپنی غلطی کی وہ تلافی کرنا چاہے تو وہ تلافی کر سکے. تو خاوند کو حاجت ہے رجوع کرنے کی، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو ندامت پیش آ جائے. طلاق تو اصل میں مبطل نکاح ہے، طلاق ہوتے ہی نکاح ٹوٹنا چاہیے تھا، لیکن شریعت نے اس مبطل نکاح یعنی طلاق کے اثر کو مؤخر کر دیا عدت کے گزرنے تک. عدت جب گزرے گی تب یہ مبطل اپنا اثر کرے گا. اور نیز اگر خاوند بیچ میں رجوع نہیں کرتا، معلوم ہے خاوند کو حاجت نہیں، اور جب حاجت نہیں ہے تو معلوم ہے مبطل کے اثر کو مؤخر کرنے کی ضرورت بھی نہیں. جب مبطل کا اثر مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مثلا عدت گزر گئی، معلوم ہوا خاوند کو حاجت نہیں تھی اس کو رجوع کرنے کی حاجت، جب حاجت نہیں تھی تو مبطل کا اثر مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں. جس وقت خاوند نے طلاق دی تھی اس وقت سے ہی نکاح کو باطل قرار دیا جائے گا، اور جب اس وقت سے نکاح باطل ہے معلوم ہو اس کے بعد ہی جو عورت نے تین حیض گزارے ہیں یہ وہ عدت والے ہیں بھائی. ورنہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت عدت گزرے گی پھر نکاح ٹوٹے گا، تو پھر تو اس نکاح ٹوٹنے کے بعد دوبارہ ایک نئی عدت عورت کو گزارنا پڑے گی، لیکن یہاں عورت پر نئی عدت نہیں آتی. معلوم ہم جب خاوند کو حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو مبطل کے اثر کو اسی وقت سے تسلیم کر لیا جائے گا جب خاوند نے طلاق دی تھی. اور جب اس وقت مبطل اپنا اثر کر چکا ہے، مبطل اپنا اثر کر چکا ہے، تو عورت تو خاوند سے جدا ہو چکی ہے، تو لہذا خاوند کو عدت کے اندر بھی اس کو سفر پر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی بھائی. اور پھر اس کے بعد صاحب ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ یہ جو طلاق رجعی ہے یہ ہمارے نزدیک تو اس کے اندر وتی حلال ہوتی ہے، البتہ وتی کرے گا خاوند تو رجوع ہو جائے گا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق رجعی کے اندر بھی وتی حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ طلاق آ چکی ہے اور طلاق قاطع زوجیت ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ زوجیت کو قطع کر دیتی ہے، نکاح کو ختم کر دیتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ چکا ہے اور اب خاوند اس کے ساتھ رجوع کرے گا تو یہ رجوع ابتدائے نکاح کے درجے میں ہے، اور ابتدائے نکاح تو جیسے نکاح کے شروع میں ایجاب اور قبول ہوتا تھا، قول ضروری ہوتا تھا، قول کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تھا، تو یہاں پر بھی یہ رجوع بھی ابتدائے نکاح کے درجے میں ہے، لہذا یہاں بھی خاوند کا زبان سے رجوع کرنا ضروری ہے، فعل کے ذریعے رجوع نہیں ہو سکتا. تو اس کا جواب دیا تھا صاحب ہدایہ نے کہ ہمارے نزدیک جو ہے یہ رجوع جو ہے یہ استدامت نکاح کا نام ہے، یعنی نکاح کو برقرار رکھنا. وجہ یہ کہ یہ شریعت نے جو اختیار دیا ہے خاوند کو، یہ خاوند پر شفقت کرتے ہوئے دیا ہے کہ خاوند کو بعد میں اگر ندامت ہو تو یہ اپنے کیے ہوئے کی تلافی کر سکے بھائی. تو جب یہ خاوند پر شفقت کرتے ہوئے شریعت نے اختیار دیا ہے تو خاوند اس میں مستقل ہوگا بھائی. چنانچہ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی جب خاوند رجوع کرے تو عورت کی مرضی کو نہیں دیکھا جائے گا، چاہے اس کی مرضی ہو چاہے نہ ہو، رجوع ہو جائے گا. معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی خاوند رجوع کے اندر مستقل ہے، ہمارے نزدیک بھی خاوند رجوع کے اندر مستقل ہے. جب خاوند رجوع کے اندر مستقل ہے معلوم ہوا ملکیت باقی ہے. अगर मिल्कियत खत्म हो चुकी होती और नई मिल्कियत आनी है तो फिर उसमें तो दोनों की मर्जी जरूरी होती है, सिर्फ एक की मर्जी से तो काम नहीं चल सकता भाई। जैसे इब्तिदाए निकाह के अंदर खावंद के साथ साथ बीवी की रजामंदी भी जरूरी होती है, दोनों की तरफ से इजाब और कबूल जरूरी होता है, फिर ही निकाह होता है, वैसे निकाह नहीं होता। तो यहां पर भी अगर ये इब्तिदाए निकाह के दर्जे में होता तो बीवी की रजामंदी भी जरूरी होती, लेकिन बीवी की रजामंदी तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक भी जरूरी नहीं है। ना मालूम हुआ ये जो रुजू है ये इस्तेदामत निकाह है, ये इंशा निकाह नहीं। इंशा का माना वजूद देना, ये निकाह को वजूद नहीं दिया जा रहा बल्कि इस्तेदामत निकाह है, निकाह को बरकरार रखा जा रहा है, निकाह को बरकरार रखा जा रहा है। अगर निकाह को बरकरार नहीं रखेगा तो इद्दत गुजरने के बाद औरत जुदा हो जाएगी भाई। तो मालूम हुआ कि रुजू जो है इस्तेदामत निकाह का नाम है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया था तलाक जो है वो कातिए निकाह है, तो तलाक आ गई है लिहाजा निकाह टूट चुका है, लिहाजा रुजू जो है वो इब्तिदाए निकाह का नाम है। रुजू जो है क्योंकि कातिए ज़ौजियत एक चीज आ चुकी है यानी तलाक, हम कहते हैं आपकी बात हमें तस्लीम है, तलाक जो है कातिए ज़ौजियत है, लेकिन शरीयत ने इसके अमल को मुअख्खर कर दिया इद्दत के गुजरने तक खावंद पर शफकत करते हुए, या बिल इजमा भाई, क्योंकि आपके नजदीक भी खावंद के रुजू करने से रुजू हो जाएगा, बीवी की रजामंदी जरूरी नहीं। मालूम हुआ हमारा और आपका इस बात में इत्तेफाक है कि खावंद मुस्तकिल होता है रुजू करने में। जब खावंद मुस्तकिल है रुजू करने में तो मालूम हुआ कि ये इब्तिदाए निकाह नहीं है भाई, बल्कि ये इस्तेदामत निकाह है। अगर इब्तिदाए निकाह होता तो खावंद मुस्तकिल नहीं हो सकता था, बीवी की मर्जी भी जरूरी होती भाई। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। फसलुन फी मा तहिल्लु बिहिल मुतल्लकतु। भाई गुज़श्ता सबक में तो साहिब हिदाया ने आपको रुजू के बारे में बतलाया था कि अगर खावंद क्या कर ले, तलाके रजई दे दे तो फिर रुजू कैसे करना है। और अब साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि अगर खावंद ने बीवी को तलाके बाइन दे दी है, या बीवी को तीन तलाकें दे दी हैं, या तलाके रजई दी थी लेकिन खावंद ने रुजू नहीं किया और इद्दत गुजर गई, औरत बाइना हो गई, तो इन सूरतों में फिर दोबारा यह औरत खावंद के लिए कैसे हलाल होगी। अगर तलाके बाइन हो गई है या तीन तलाकें आ गई हैं तो यह औरत दोबारा अब खावंद के लिए कैसे हलाल होगी। मैंने आपको बतलाया था भाई, पहले भी यह बात कई दफा जिक्र हो चुकी कि अगर खावंद बीवी को तलाके बाइन दे दे तो निकाह टूट गया, अब रुजू तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर दोबारा इसी औरत को वो रखना चाहता है तो फिर नया निकाह करना पड़ेगा और नया महर मुकरर करना पड़ेगा। फिर खावंद ने दूसरी तलाके बाइन भी दे दी कुछ अरसे के बाद, तो अब भी इस औरत से खावंद निकाह कर सकता है। यह औरत अगर किसी और से निकाह करना चाहती है तो इद्दत के बाद निकाह करेगी, लेकिन अगर इसी खावंद से निकाह करना चाहती है तो इद्दत के अंदर भी निकाह कर सकती है और इद्दत के बाद भी निकाह कर सकती है। तो खावंद ने तलाके बाइन दी है, वो दोबारा इसी औरत से निकाह करना चाहता है तो इद्दत के अंदर भी निकाह कर सकता है और इद्दत के बाद भी निकाह कर सकता है, लेकिन अगर तीन तलाकें दे दी हैं अब निकाह की कोई सूरत नहीं, अब हुर्मत मुगल्लजा आ गई, सख्त किस्म की हुर्मत आ गई, अब इस औरत को किसी और से ही निकाह करना पड़ेगा। फिर अगर उस शख्स ने जिंदगी में कभी तलाक दे दी या उस शख्स का इंतकाल हो गया तो फिर इद्दत गुजारने के बाद पहले खावंद के लिए इससे निकाह जायज हो जाएगा, वैसे जायज नहीं। मालूम हुआ कि जब खावंद तीन तलाकें दे दे फिर निकाह की कोई सूरत नहीं है, इल्ला ये कि दरमियान में एक दूसरा खावंद आए, वो मुहल्लिल है, वो दूसरा खावंद वो पहले खावन के लिए इस बीवी को हलाल करेगा, लेकिन दूसरे खावन में सिर्फ निकाह काफी नहीं है बल्कि वहां दूसरे खावन की सोहबत भी जरूरी है। वो सोहबत करेगा तो फिर ही पहले खावन के लिए हलाल होगी, अगर सिर्फ निकाह किया और तलाक दे दी दूसरे खावन ने तो फिर ये पहले खावन के लिए हलाल नहीं है भाई। تو دیکھیے اب صاحب ہدایت تفصیل بیان فرمائیں گے. کہتے ہیں فصل فی ما تحل به المطلقۃ, یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں کہ جن کے ذریعے مطلقہ حلال ہو جاتی ہے. وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا دُونَ الثَّلَاثِ, اور اگر طلاق جو ہے وہ بائن ہو, دون الثَّلَاثِ تین کے علاوہ, یعنی تین نہ ہو, تین سے کم, خاوند نے بیوی کو طلاق بائن دی ہے لیکن تین طلاقیں نہ ہو, تین سے کم ہو, تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا دُونَ الثَّلَاثِ, اور جب طلاق جو ہے وہ ایسی بائن ہو جو تین سے کم ہو, فَلَهُ أَن يَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ, تو خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے عدت میں بھی, وبعد انقضائها, اور عدت کے گزرنے کے بعد بھی, لان حل المحلیت باق, اس لیے کیونکہ اس محل کا حلال ہونا باقی ہے. بھئی یہ عورت جس کو خاوند نے ایک طلاق بائن دی ہے, یہ ابھی بھی اس خاوند کے لیے حلال ہے, یہ دوبارہ اسے نکاح کر سکتا ہے. پھر اگر دوسری طلاق بائن بھی خاوند نے بعد میں دے دی, یہ عورت ابھی بھی اس کے لیے حلال ہے, خاوند اسے نکاح کر سکتا ہے. لیکن اگر خاوند نے پھر تیسری طلاق دے دی, تو اب یہ عورت خاوند کے لیے محل نکاح ہی نہیں ہے, خاوند اسے نکاح کر ہی نہیں سکتا. بھائی تو اب محل کا حلال ہونا ختم ہو گیا. ہاں پھر درمیان میں کوئی محلل آئے کسی اور خاوند سے نکاح کرے اور وہ صحبت کرے اور پھر وہ چھوڑ دے, تو پھر پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی. تو جب تک تین طلاقیں پوری نہیں, عورت اسی خاوند کے لیے حلال ہے, وہ نکاح کر سکتا ہے. تو یہی بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں لِأَنَّ حِلَّ الْمَحَلِّيَّتِ بَاقٍ, اس لیے کیونکہ اس محل کا حلال ہونا ابھی بھی باقی ہے. لِأَنَّ زَوَالَهُ مُعَلَّقٌ بِالطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ, اس لیے کیونکہ اس حلت کا ختم ہونا, یہ عورت ابھی بھی خاوند کے لیے حلال ہے, اس کا حلال ہونا کب ختم ہوگا؟ تین طلاقوں کے ساتھ. جب اگر تین طلاقیں پوری ہو گئیں, اب یہ خاوند کے لیے حلال نہ رہے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے لِأَنَّ زَوَالَهُ, اس لیے کیونکہ یہ جو حلت ہے اس کا ختم ہونا, مُعَلَّقٌ, یہ معلق ہے, بِالطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ, تیسری طلاق کے ساتھ, فَيَنْعَدِمُ قَبْلَهُ, لہذا یہ زوال حلت جو ہے, حلت کا ختم ہونا, يَنْعَدِمُ, یہ معدوم ہوگا, قَبْلَهُ, تیسری طلاق سے پہلے. تیسری طلاق سے پہلے تک حلت موجود ہے, اس وقت تک حلت کا ختم ہونا نہیں ہے. بھائی آگے دیکھیے, وَمَنْعُ الْغَيْرِ فِي الْعِدَّةِ لِاشْتِبَاهِ النَّسَبِ, صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلا دیا متن کے اندر کہ خاوند نے بیوی کو طلاق بائن دی ہے, ابھی تین طلاقیں پوری نہیں ہوئی, تو خاوند عدت کے اندر بھی اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے اور عدت کے بعد بھی. لیکن اگر کسی اور سے یہ عورت نکاح کرنا چاہتی ہے, تو عدت کے بعد ہی نکاح کرنا پڑے گا, عدت سے پہلے نہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے اس خاوند کے نکاح اور دوسرے کے نکاح میں, کیا فرق ہے کہ آپ خاوند کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ عدت کے اندر بھی نکاح کر سکتا ہے, اور دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ عدت کے اندر نکاح نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو غیر کے ساتھ نکاح سے عورت کو منع کیا گیا ہے, وہ اس وجہ سے تاکہ کہیں بچے کا نسب مشتبہ نہ ہو جائے. اگر طلاق کے فوراً بعد عورت نکاح کر لے گی, تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب تو مشتبہ ہے, معلوم نہیں یہ پچھلے خاوند کی اولاد ہے یا اس نئے خاوند کی اولاد ہے. لیکن جب درمیان میں تین حیض گزر جائیں گے, معلوم ہوا یہ عورت پہلے خاوند سے حاملہ نہیں, اس کے پیٹ میں پہلے خاوند کی کوئی اولاد نہیں ہے, تو اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ دوسرے خاوند ہی کا شمار ہوگا. تو لہذا یہ جو دوسرے کے ساتھ نکاح سے منع کیا گیا ہے عورت کو عدت کے اندر, اس کی وجہ کیا ہے؟ اشتباہ نسب, نسب کا مشتبہ ہونا. اور جبکہ اگر اسی خاوند سے عورت نکاح کرے گی, تو چاہے عدت کے اندر بھی نکاح کر لے, اشتباہ نسب تو نہیں ہے, کیونکہ پہلے بھی یہی خاوند تھا, اب بھی وہی خاوند ہے, معلوم ہو بچہ اسی کا شمار ہوگا, تو یہاں تو کوئی اشتباہ نسب نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَمَنْعُ الْغَيْرِ فِي الْعِدَّةِ, اور دوسروں کو منع کرنا عدت کے اندر کہ وہ اس سے نکاح کریں, تو دوسروں کو منع کرنا عدت کے اندر نکاح سے, لِاشْتِبَاهِ النَّسَبِ, یہ نسب کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے ہے, وَلَاشْتِبَاهَ فِي اِطْلَاقِهِ, اور کوئی اشتباہ نہیں ہے, فی اطلاقِهِ, اطلق یطلق, اطلاق کا معنی ہے آزاد کر دینا. مطلق کو بھی مطلق کیوں کہتے ہیں؟ क्योंकि वह आजाद होता है, उसमें कोई कैद नहीं होती। तो कहते हैं वलश्तिबाह फी इतलाक ही, और इस खावंद के इतलाक के अंदर कोई इश्तिबाह नहीं है, यानी इसको मुतलक छोड़ दिया जाए, चाहे ये इद्दत के अंदर निकाह करे और चाहे इद्दत के बाद निकाह करे, इसके इतलाक में कोई इश्तिबाह नहीं, क्योंकि जो भी बच्चा पैदा होगा वो इसी खावंद का होगा भाई, वहां कोई इश्तिबाह नहीं। तो कहते हैं वलश्तिबाह फी इतलाक ही, और इस खावंद के मुतलक होने में यानी इसके लिए निकाह जायज होने में कोई इश्तिबाह नहीं है। वह इनकान तलाक सलासन फिल हुर्रति और सिनतैन फिल अमति। अब सूरत यह कि खावन ने बीवी को तीन तलाकें दे दी हैं, और यही हुक्म है बांदी का भी, अगर उसको खावन दो तलाकें दे दे, क्योंकि आजाद औरत की ज्यादा से ज्यादा तीन तलाकें हैं तो बांदी की दो तलाकें हैं। तो अगर खावन ने आजाद औरत को तीन तलाकें दे दी, या इसकी औरत बांदी थी और खावन ने उसको दो तलाकें दे दी, तो अब हुर्मत मुगल्लजा आ गई, सख्त किस्म की हुर्मत आ गई। अब दरमियान में कोई और खावंद आएगा और वो सोहबत करेगा तो फिर ही ये पहले खावंद के लिए हलाल होगी, वरना अब निकाह की कोई सूरत नहीं है भाई। तो कहते हैं वह इनकान तलाक सलासन फिल हुर्रति, और अगर तलाकें तीन हुई आजाद औरत में, और सिनतैन फिल अमति, या दो हुई बांदी में, लम तहिल लहू हत्ता तन्किह ज़ौजन गैरहू, तो यह औरत उस खावंद के लिए हलाल नहीं है यहां तक कि यह औरत किसी और खावंद से निकाह कर ले, निकाहन सहीहन, और निकाह भी कैसा हो, सही निकाह हो। तो कहते हैं लम तहिल लहू, यह औरत पहले खावन के लिए हलाल नहीं है, हत्ता तन कि हज़ौजन गैरहू निकाहन सहीहन, यहां तक कि किसी दूसरे खावन के साथ सहीह निकाह कर ले, वयदखुल बिहा, और फिर वो दूसरा खावन इसके साथ सोहबत भी कर ले, सुम्मा युतल्लिकहा, फिर वो खावन इसे तलाक दे दे, औ यमूत अनहा, या इसको छोड़कर मर जाए, तो फिर इस सूरत में यह पहले खावन के लिए हलाल होगी। वल असलु फीही कौलुहु तआला, और असल जो है यानी दलील इसके अंदर वो अल्लाह ताला का ये कौल है, फइन तल्लकहा फला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तन्किह ज़ौजन गैरह। फइन तल्लकहा, अगर खावन ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, फला तहिल्लु लहु मिन बादु, तो ये औरत इस खावन के लिए हलाल नहीं है उसके बाद। याद रखो अक्सर मुफस्सिरीन के नजदीक यहां ये जो तलाक जिक्र हो रही है वो तीसरी तलाक है, क्योंकि तीसरी तलाक के बाद औरत खावन के लिए हलाल नहीं रहती। अब दरमियान में मुहल्लिल का आना जरूरी है, ऐसा दूसरा खावन जो क्या कर देगा, पहले खावन के लिए बीवी को हलाल कर देगा, तो उसको क्या कहेंगे, मुहल्लिल भाई, हलाल करने वाला। तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं फइन तल्लकहा फला तहिल्लु लहु मिन बादु, कि अगर खावन बीवी को तीसरी तलाक दे दे तो ये, तो उसके बाद ये औरत उसके लिए हलाल नहीं है, हत्ता तन कि हज़ौजन गैरहू, यहां तक कि ये औरत निकाह कर ले किसी दूसरे खावंद से, यहां तक कि औरत निकाह कर ले किसी दूसरे खावंद से। तो यहां इश्काल होता है, इश्काल ये कि आयत के अंदर तो सिर्फ निकाह का जिक्र है, और ए अहनाफ आप निकाह के साथ साथ दूसरे खावन की सोहबत की भी कैद लगाते हैं, तो ये इसकी क्या दलील है? तो जवाब ये कि आयत के अंदर ही इसकी दलील मौजूद है। किस तरह, कि आयत में क्या आया, हत्ता तन कि ज़ौजन गैरहू, तन कि का लफ्ज भी आया और ज़ौज का लफ्ज भी आया, और ज़ौज का लफ्ज निकाह पर दलालत कर रहा है। ज़ौज उसी को कहते हैं जिसके साथ निकाह हो भाई, ज़ौज उसी को कहते हैं जिसके साथ निकाह हो, तो ज़ौज का लफ्ज खुद निकाह पर दलालत कर रहा है, और उसके साथ तनकिहा का लफ्ज भी आ गया, निकाह का अलग लफ्ज भी आ गया। तो अगर याद रखो दो लफ्ज आए और दूसरे लफ्ज का आप वही माना करें जो पहले का था, पहले लफ्ज से एक माना का पता चल गया, पहले लफ्ज से एक माना का पता चल गया, आप दूसरे का भी वही माना करें तो इसको कहते हैं ताकीद भाई जी। इसको क्या कहते हैं, ताकीद, यानी ये उसी पहले के माना को पक्का कर रहा है, जो पहले का माना था वही दूसरे का भी माना है, तो इसको क्या कहते हैं, ताकीद। लेकिन अगर पहले लफ्ज का माना और हो और दूसरे लफ्ज का माना और हो तो इसको तासीस कहते हैं, क्या कहते हैं, तासीस, यानी नया माना आ रहा है। और याद रखो तासीस औला है ताकीद से, तासीस औला है ताकीद से। एक लफ्ज को उसी माना पर महमूल करना जो पहले लफ्ज का था, इसके बजाय बेहतर यह है कि लफ्ज को नए माना पर महमूल किया जाए। भाई यह यूं कहें, एक है इआदा और एक है इफादा। इआदा यह है कि पहला लफ्ज जिस माना का फायदा दे रहा था, दूसरा भी उसी माना का फायदा दे रहा है, वही ताकीद का नाम क्या रख दो, इआदा। तो यह इआदा है कि उसी बात को आपने दोबारा लौटा दिया। और एक है कि दूसरे लफ्ज का आप नया माना करें, इसको कहेंगे इफादा, कि यह नया फायदा दे रहा है। यह क्या कर रहा है, तो अगर दूसरे लफ्ज का वही माना है जो पहले का था, तो यह तो इआदा हो गया, आपने गोया वही चीज दोबारा लौटा दी। और अगर आप इसका नया माना करेंगे तो यह इफादा हो गया, इसने अलग फायदा दिया, इस लफ्ज ने एक अलग फायदा दिया जो फायदा पिछले लफ्ज ने नहीं दिया था। तो यहां पर भी तनकिहा लफ्ज पहला है और जौजन बाद में आ रहा है, तनकिहा से निकाह का पता चल गया और जौज से भी निकाह का पता चल रहा है, तो इसको ताकीद कहना पड़ेगा और या इसको इआदा कहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम निकाह का माना वती और सोहबत के कर लें, आपने पढ़ा था जहां किताबुन निकाह शुरू हुई थी, मैंने आपको बतलाया था भाई, जहां हमने निकाह का बाब शुरू किया था, बिल्कुल शुरू में मैंने आपको एक बहस लिखवाई थी और मैंने आपको बतलाया था कि निकाह का लुगवी माना, यानी अरबी जुबान में निकाह वती को भी कहते हैं और आकद को भी कहते हैं। वती यानी सोहबत करना, इसको भी अरबी जुबान में निकाह कहते हैं, और ये जो आकद किया जाता है इसको भी निकाह कहा जाता है। फिर बाज उलमा फरमाते हैं ये दोनों माना इसके हकीकी हैं, और बाज कहते हैं कि वती हकीकी माना है और आकद इसका मजाजी माना है, बाज इसके बरअक्स कहते हैं। वहां तफसील मैंने बयान की थी भाई। तो मालूम हुआ निकाह का माना आकद के भी हैं और निकाह का माना वती के भी हैं। तो लिहाजा यहां पर हम तनकिहा लफ्ज का माना वती के कर लेंगे। जब तनकिहा का माना वती है तो मालूम हुआ जौज से भी निकाह का माना मफहूम हो रहा है। तो माकबल तनकिहा से क्या मुराद हुआ, वती, और अगले जौज से क्या मुराद हुआ, निकाह। तो लिहाजा देखो ये तासीस आ गई और तासीस औला है किसके मुकाबले में, ताकीद के मुकाबले में, या यूं कहो इफादा औला है इआदे के मुकाबले में। तो लिहाजा यहां तनकिहा से वती मालूम हो रही है, मालूम हुआ दूसरे खावंद का वती करना भी जरूरी है। इस पर इश्काल होता है कि आप तनकिहा का माना वती के कैसे कर सकते हैं, तनकिहा तो मुअन्नस का सीगा है, इसकी निस्बत तो औरत की तरफ हो रही है और औरत तो वती करने वाली नहीं होती, औरत तो मौतुआ होती है जी। औरत तो मौतुआ होती है, तो यहां तो हत्ता तनकिहा का क्या माना बन जाएगा, हत्ता तनकिहा, यहां तक कि वो औरत वती कर ले। भाई वो औरत वती करेगी या खावंद वती करता है, खावंद वती करता है तो यहां तो औरत की तरफ निस्बत हो रही है, मुअन्नस का सीगा है। तो जवाब यह कि इसको मजाज पर महमूल किया जाएगा। यह इसी तरह है जैसे अज़ानियतु वज़ानी, औरत जिसने जिना किया है उसको कुरान में जानिया कहा गया, हालांकि वो जानिया नहीं है, वो तो मजनिया है, जिना करने वाला तो मर्द है और औरत क्या है, मजनिया है, यानी उसने जिना की कुदरत दी है उस शख्स को भाई, तो वो मजनिया है। लेकिन औरत को मजाजान जानिया यानी जिना करने वाली कहा गया, तो यहां पर भी तनकिहा औरत की तरह मजाजन निस्बत कर दी गई भाई, वो वती करने वाली है यानी वती पर कुदरत देने वाली है भाई। तो कहते हैं फइन तल्लकहा फला तहिल्लु लहु मिन बादु, अगर खावन बीवी को तीसरी तलाक दे दे तो वो बीवी उसके लिए हलाल नहीं है उसके बाद, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहु, यहां तक कि कोई दूसरा खावन उसके साथ सोहबत कर ले। वल मुरादु तलकतु सालिसतु, और इस आयत के अंदर जो तलाक का लफ्ज आया था इससे मुराद तीसरी तलाक है। मैंने बतलाया अक्सर मुफस्सरीन के नजदीक तीसरी तलाक है क्योंकि उसी के बाद औरत हलाल नहीं रहती भाई। والسنتان فی حق الامتی کا سلاس فی حق الحرتی، اور دو طلاق باندی کے حق میں اسی طرح ہے جیسے تین طلاقیں ہیں آزاد عورت کے حق میں. لان الرق منصف لحل المحلیت علی ما عرف، لان الرق اس لیے کیونکہ غلامی جو ہے منصف وہ تنصیف کرتی ہے، وہ آدھا کر دیتی ہے لحل المحلیتی محل کے حلال ہونے کو، علامہ عرفا اس وجہ سے جو جان لیا گیا. علامہ عرفا علامہ کس لیے ہے؟ تعلیل کے لیے، علت بیان کر رہا ہے. علامہ عرفا اس وجہ سے جس کو جان لیا گیا، یعنی جیسے کہ اصول کی کتابوں میں ذکر ہے کہ باندی کے حق میں سزاؤں کی بھی تنصیف ہے، سزائیں بھی آدھی ملیں گی اس کو. مثلا اگر آزاد مرد یا عورت جو ہے وہ زنا کریں غیر شادی شدہ تو ان کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، لیکن اگر باندی یا غلام جو ہیں وہ زنا کریں تو ان کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے. تو سزا میں بھی باندی اور غلام کا حکم نصف ہے. تو لہذا معلوم ہوا یہ جو غلامی ہے اس کی وجہ سے نعمتوں میں بھی تنصیف ہوتی ہے اور سزاؤں میں بھی تنصیف. نصف ینصف تنصیف کا معنی ہے آدھا کرنا. تو غلامی کی وجہ سے نعمتوں میں بھی تنصیف، نعمتیں بھی آدھی ہو جائیں گی، اور سزاؤں میں بھی تنصیف، سزائیں بھی آدھی ہو جائیں گی. یہ بات صاحب ہدایہ پیچھے کئی جگہ ذکر فرما چکے ہیں. مثلا جہاں 4 نکاحوں کی بات آئی تھی، بتلایا تھا کہ آزاد کو 4 نکاحوں کی اجازت ہے، تو غلام کو 2 نکاحوں کی اجازت ہے کیونکہ غلامی نعمت کی تنصیف کر دیتی ہے. نیز جہاں پر یہ ذکر آیا تھا کہ باندی کے اوپر تو آزاد عورت سے نکاح جائز ہے، پہلے نکاح میں باندی ہے اور پھر اب نکاح کس سے کرنا چاہتا ہے؟ آزاد عورت سے، یہ تو جائز ہے، لیکن اگر پہلے نکاح میں آزاد عورت ہے اور پھر باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اب جائز نہیں ہے. اور اسی طرح پیچھے ذکر آیا تھا کہ آزاد عورت کی 3 طلاقیں ہیں تو باندی کی آدھی ہوں گی، یعنی 1.5 طلاق، لیکن 1.5 تو ہو نہیں سکتی تو دوسری کو پورا کر دیا جائے گا، تو 2 طلاقیں ہیں باندی کی. تو یہ صاحب ہدایہ کئی جگہ یہ بات ذکر کر چکے ہیں. تو کہتے ہیں لأن الرق منصف لحل المحلیت علی ما عرف، اس لیے کیونکہ غلامی جو ہے وہ اس محل کے حلال ہونے کی تنصیف کر دیتی ہے، اس کو آدھا کر دیتی ہے. علی ما عرف بنا بر اس کے جس کو جان لیا گیا، اس وجہ سے جسے جان لیا گیا. آگے دیکھیے ثم الغاية نکاح الزوج مطلقا والزوجية المطلقة انما تثبت بنکاح صحیح. بھئی دیکھیے آیت کے اندر غایا ذکر ہے، فلا تحل له من بعد، اس کے بعد جب خاون نے 3ری طلاق دے دی اب یہ عورت اس خاون کے لیے حلال نہیں. اور حتی آگے ذکر ہوا، اور حتی کے ذریعے کسی چیز کی غایا کو ذکر کیا جاتا ہے، حتی تن کی حضاؤ جن گئے رہا، یہاں تک کہ کوئی دوسرے خاون سے یہ عورت نکاح کر لے اور وہ پھر اس کے ساتھ صحبت کر لے. تو یہ کس چیز کی غایا ذکر ہو رہی ہے؟ عدم حلت کی. کس کی؟ عدم حلت کی، کہ یہ عورت اب خاون کے لیے حلال نہیں ہے. بھائی تو یہ عدم حلت بیان ہو گئی، فلا تحل له، یہ عورت اب اس کے لیے حلال نہیں. تو یہ عدم حلت کی انتہا کب ہوگی؟ یہ عدم حلت کب ختم ہوگی، کب حلال ہوگی؟ جب دوسرا خاون نکاح کر لے گا اور صحبت کر لے گا. تو عدم حلت کی انتہا کیا ہے؟ زوج ثانی اور اس کی صحبت. بھائی تو کہتے ہیں ثم الغایۃ نکاح الزوج مطلقا، پھر غایا جو ہے کس چیز کا غایا؟ یہ بار بار دہرائیں، آگے ذکر ہوگا عدم حلت کہ بیوی جو ہے اب خاون کے لیے حلال نہیں ہے. تو اس کی انتہا کب ہوگی، یعنی عورت حلال کب ہوگی؟ اس کی غایا ذکر کی گئی ہے باقاعدہ آیت کے اندر. تو کہتے ہیں ثم الغایۃ، پھر اس عدم حلت کی جو غایا ہے آیت کے اندر، نکاح الزوج مطلقا، وہ مطلق خاوند کا نکاح ہے. بھائی وہ مطلق خاوند کا، حتی تنکح زوجا غیرہ، مطلق نکاح کا ذکر ہے. اور اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ صحیح نکاح یا فاسد نکاح. بھائی نکاح بھی تو 2 قسم پر ہے، ایک نکاح ہے صحیح، ایک نکاح ہے فاسد. نکاح فاسد کسے کہتے ہیں؟ مثلا عدت کے اندر ایک عورت سے نکاح کر لیا تو یہ نکاح فاسد ہے. بھائی یا اسی طرح एक वक्त में चार औरतें निकाह में हैं और एक शख्स क्या कर लेता है, पांचवीं औरत से निकाह कर लेता है, तो ये निकाह भी क्या हुआ, फासिद हुआ। या इसी तरह बगैर गवाहों के निकाह कर लिया तो ये सब क्या है, निकाह फासिद। और आपने पढ़ा था कि निकाह फासिद का कोई हुक्म नहीं है, ये कल आदम है, इसको शुमार ही नहीं करना और कोई हुक्म भी इसका नहीं है, इल्ला ये कि खावन सोहबत कर ले, सोहबत कर लेगा तो फिर अब निकाह फासिद के अहकाम आएंगे। ये औरत बीवी नहीं बनी इसकी, लेकिन इसने सोहबत कर ली है, अब इसको महर देना पड़ेगा और नीज अब जुदाई आपस में करनी पड़ेगी और औरत को इद्दत गुजारनी पड़ेगी, बगैर इद्दत के उसका आगे निकाह जायज नहीं भाई। तो कहते हैं सुम मल गाया तो निकाह ज़ौज मुतलकन, फिर इस आदम हिल्लत की जो गाया है वो मुतलक खावंद का निकाह है। वह ज़ौजियतुल मुतलकतु इन्नमा तस्बुतु बिन्निकाहिन सहीहिन, और मुतलक ज़ौजियत वो तो निकाह सही से साबित होगी। भाई आयत में तो सिर्फ निकाह का जिक्र है और निकाह सही भी हो सकता है और फासिद भी हो सकता है, लेकिन निकाह मुतलकन जिक्र है और अल मुतलकु इज़ा युतलकु युरादु बिहिल फर्दुल कामिल, जब मुतलकन जिक्र किया जाए तो उससे फर्द कामिल मुराद होता है, यानी जब एक ऐसा मुतलक है जिसके अफराद मुख्तलिफ दर्जों वाले हैं, किसी में एक माना की कमी है, किसी के अंदर माना की ज्यादती है, तो इस सूरत में उसको उस माना पर महमूल करेंगे जो इस मुतलक का कामिल फर्द हो भाई, जिसमें यह वाला माना कामिल तौर पर पाया जाए। निकाह फासिद में तो निकाह का माना कामिल तौर पर नहीं, निकाह सही के अंदर निकाह का माना कामिल तौर पर है भाई। तो लिहाजा अल मुतलक इज़ा युतलक युराद बिहिल फर्दुल कामिल, लिहाजा इस निकाह से कौन सा निकाह मुराद लेंगे, निकाह सहीह मुराद लेंगे, फासिद नहीं, तो इसीलिए सही की कैद लगा रहे हैं। तो कहते हैं वह ज़ौजियतुल मुतलकतु इन्नमा तस्बुतु बिनिकाहिन सहीहिन, इसलिए क्योंकि मुतलक ज़ौजियत जो है वो साबित होती है निकाह सहीह से। वह शर्तु दुखूल सबत बि इशारतिन नसी, अच्छा भाई मतन में तो कैद लगाई थी कि सिर्फ निकाह काफी नहीं है बल्कि सोहबत भी होनी चाहिए, मैंने वजह जिक्र कर दी कि आयत से ही साबित हो रहा है कि खावन का सोहबत करना भी जरूरी है, अब उसी को जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वह शर्त दुखूल सबत भी इशारत नस, और दुखूल की शर्त जो है वो भी इशारत नस से साबित है, किससे, इशारत नस से साबित है, यानी नस से इशारा हो रहा है, साफ लफ्जों में तो कुरान में नहीं है कि दूसरे खावंद की सोहबत भी जरूरी है, लेकिन कुरान के अल्फाज से इशारा हो रहा है, किस तरह कि यह तनकिहा और जौज का लफ्ज, इसमें इस जौज के लफ्ज को हम तासीस पर महमूल कर लें यह औला है, तो लिहाजा तासीस पर जब महमूल करेंगे तो मालूम हुआ वती की भी कैद लगाना पड़ेगी। तो कहते हैं वह शर्त दुखूल सबत भी इशारत नसी, और दुखूल की शर्त जो है वो इशारत नस से साबित है, यानी किताबुल्लाह से साबित है। वह हुआ अन युहमल निकाह अलल वतई, और वो ये कि निकाह का लफ्ज जो आयत में आया है हत्ता तन की हा, ये जो निकाह वाला लफ्ज आयत में आया है इसको महमूल किया जाएगा अलल वतई, वती पर, अकद पर महमूल नहीं करेंगे बल्कि वती पर महमूल करेंगे। हमलन लिल कलाम अलल इफा दती दून अल इआदती, कलाम को इफादे पर महमूल करते हुए दून अल इआदती ना के इआदे पर जी। तर्जमा फिर देख लीजिए, वह हुआ अयुह मलन निकाह अलल वक्त हमलन लिल कलामी अलल इफादती दून अल इआदती, और वो ये कि निकाह का लफ्ज जो है उसको महमूल किया जाए वती पर, कलाम को इफादे पर महमूल करने के लिए न के इआदे पर, क्योंकि इफादा औला है, या इसी तरह तासीस औला है ताकीद से। इदिल अक्द उस्तुफीद अभी इतलाक इसम जौजी, इसलिए क्योंकि आकद यानी निकाह जो है उस्तुफीदा, उसका तो फायदा हासिल हो रहा है भी इतलाक इसम जौजी, जौज के इसम का इतलाक करने से। जौज का इसम जो जिक्र किया गया है आयत के अंदर, इस जौज से ही निकाह का माना समझ में आ रहा है, जौज उसी को कहते हैं जिसके साथ निकाह किया जाए भाई। तो कहते हैं ईदिल अक्द उस्तुफीद भी इतलाक इसमें ज़ौजी, इसलिए क्योंकि अक्द निकाह जो है उसका फायदा तो इसमें ज़ौज के इतलाक से हासिल हो रहा है। औ युज़ादु अलन्नस बिल हदीस अल मशहूर, औ युज़ादु इसका अतफ है पीछे सबता पर, पीछे क्या आया था शर्त दुखूली, दुखूल की शर्त سابت بھی اشارت النص، یا یہ اشارت النص سے ثابت ہے. آگے ہے او یزاد علی النص بالحدیث المشہوری، تو یہ سابت بھی اشارت النص کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ یزادو رکھ دیں، تو کلام یوں بن گیا وشرط دخولی یزاد علی النص بالحدیث المشہوری، کہ دخول کی شرط بڑھائی جائے گی نص پر، کس کے ذریعے؟ حدیث مشہور کے ذریعے. دو جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ یہ جو دخول کی ہم نے شرط لگائی ہے، یا تو یہ شرط اسی کتاب اللہ ہی سے اشارہ ہو رہا ہے اس کے ذریعے ثابت ہو جائے گی، یا یہ حدیث مشہور کے ذریعے ثابت ہے. تو دو دلیلیں ذکر کر دیں، بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں او یزاد علی النص، یا یہ کہ دخول کی شرط جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا اس نص یعنی کتاب اللہ پر، بالحدیث المشہوری، حدیث مشہور کے ذریعے. اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے بھائی. وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، آپ نے فرمایا لا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَزُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخَرِ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور پھر وہ عورت دوسرے خاوند سے نکاح کر لیتی ہے، پھر وہ خاوند اس کو صحبت سے پہلے طلاق دے دیتا ہے، تو کیا یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی؟ یعنی جب حرمت مغلظہ آ چکی ہے اور دوسرے خاوند نے صرف نکاح کیا ہے صحبت نہیں کی، تو کیا یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی؟ تو حضور جواب میں فرمانے لگے لا تحل للاولی، یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی، حتی تذوق، یہاں تک کہ یہ عورت چکھ لے، عسیلۃ الاخری، دوسرے سے جماع کی لذت کو چکھ لے. یاد رکھو یہ عسیلہ یہ تصغیر ہے عسلتن کی بھائی، اور وہ عسل شہد کو کہتے ہیں بھائی، اور جیسے شہد کے چکھنے میں لذت ہے اسی طرح جماع کے اندر بھی لذت ہوتی ہے، تو یہ عسیلہ کنایا ہے جماع سے، عسیلہ کنایا ہے جماع سے. تو حضور فرما رہے ہیں لا تحل للاولی، یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی، حتی تذوق عسیلۃ الاخری، یہاں تک کہ دوسرے سے جماع کی لذت چکھ لے، دوسرے خاوند سے جماع کی لذت اٹھا لے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا دوسرے خاوند کی صحبت ضروری ہے. آگے دیکھیے تو کہتے ہیں رویہ بھی روایات، یہ حدیث روایت کی گئی ہے کئی روایتوں کے ساتھ، یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ. تو کہتے ہیں رویہ بھی روایات، اس حدیث کو مختلف الفاظ کے ساتھ روایت کیا گیا ہے. ولا خلاف علی احد فیہ، اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، دوسرے خاوند کا صحبت کرنا ضروری ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، سوا سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ، سوائے سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے. یہ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلیل القدر تابعی گزرے ہیں بھائی، اور سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلیل القدر تابعی گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صرف نکاح کافی ہے، بس صحبت ضروری نہیں ہے. لیکن بعض علماء نے لکھا ہے بھائی کہ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعد میں جمہور کے قول کی طرف رجوع فرما لیا تھا کہ صحبت ضروری ہے دوسرے خاوند کی، بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں ولا خلاف علی احد فیہ، اور اس میں کسی کا ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے، سوا سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوائے سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وقوله غیر معتبر، اور ان کا قول معتبر نہیں. صاحب ہدایہ کیا فرما رہے ہیں، صرف کس نے اختلاف کیا ہے؟ سعید ابن مسیب نے، لیکن ان کا قول معتبر نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث مشہور کے مخالف ہے بھائی، حدیث کے اندر آ گیا کہ یہ صحبت ضروری ہے بھائی. تو کہتے ہیں وقوله غیر معتبرین، اور ان کا قول معتبر نہیں ہے، حتی لو قضا به القاضی لا ينفذ، یہاں تک کہ اگر کوئی قاضی بھی اس پر فیصلہ کر دے گا ان کے قول کو لے کر تو بھی وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا کیونکہ یہ حدیث مشہور کے مخالف ہے بھائی. تو کہتے ہیں وشرط الایلاج دون الانزال لانه کمال و مبالغۃ فیہ والکمال قید زائد، یہاں سے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ دوسرے خاوند کی صحبت تو ضروری ہے، کیا دوسرے خاوند کا انزال بھی ضروری ہے یا صرف ادخال کافی ہے؟ तो साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि नहीं, इंजाल की कैद नहीं, इंजाल की कैद नहीं, सिर्फ दुखूल का पाया जाना जरूरी है, इंजाल का होना जरूरी नहीं भाई। तो कहते हैं वह शर्तुल इलाज अवलाजा यूलिजु, इलाज का माना है दाखिल करना। कहते हैं वह शर्तुल इलाज दून अल इंजाली, और शर्त जो है वो दाखिल करना है दून अल इंजाली न के इंजाल, लिअन्नहु कमालुन व मुबालगतुन फीही, इसलिए क्योंकि इंजाल जो है ये तो दुखूल के अंदर कमाल और मुबालगे का नाम है, यानी दुखूल के अंदर सोहबत के अंदर कमाल और मुबालगा जो है वो इंजाल है, यानी कामिल तौर पर सोहबत है, तो कामिल तौर पर खूब अच्छी तरह सोहबत का नाम इंजाल है। और ये एक जायद कैद है, इस पर कोई दलील मौजूद नहीं ना कुरान में और ना हदीस में, लिहाजा इंजाल की कैद नहीं होगी, हां दुखूल की कैद होगी। दुखूल काफी है भाई, इससे लज्जत जिमा हासिल हो गई। और नीस हदीस के अंदर भी क्या आया है, हत्ता तजूका उसैला तल आखरी, उसैला तस्गीर जिक्र की गई है, मालूम हुआ अदना दर्जे की लज्जत भी काफी है, और अदना दर्जे की लज्जत तो दुखूल से हो जाएगी। तो यह माना है, तो कहते हैं वह शर्तुल इलाज दूनल इंजाली, और शर्त जो है वो इदखाल है न के इंजाल, लिअन्नहु कमालुन व मुबालगतुन फीही, इसलिए क्योंकि इंजाल जो है वो तो दुखूल के अंदर कमाल है, यानी उसको कामिल करना है और उसमें मुबालगा है, वल कमालु कैदुन जाइदुन, और दुखूल के अंदर कामिल होना ये कैद जाइद है जिस पर कोई दलील मौजूद नहीं। मालूम हुआ इंदल अहनाफ नफ से दुखूल पाया जाए तो काफी है, जबकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते नहीं, इंजाल जरूरी है, दूसरे खावंद का सिर्फ इदखाल काफी नहीं है बल्कि इंजाल भी जरूरी है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, इंजाल पर कोई दलील मौजूद नहीं है भाई। आगे देखिए, कहते हैं वसबीयुल मुराहिक फी तहलील कल बालिग, सबीय मुराहिक भाई, सबीय मुराहिक वो बच्चा जो बालिग होने के करीब है, अभी बालिग तो नहीं हुआ लेकिन बालिग होने के करीब है, तो अगर ऐसा बच्चा इस औरत के साथ सोहबत कर ले, मसलन वली ने इस बच्चे से औरत का निकाह करवा दिया, क्योंकि बच्चा तो निकाह नहीं कर सकता, वली ने करवा दिया, और इस बच्चे ने बुलूग से पहले ही इस औरत के साथ सोहबत कर ली, अब बच्चा तलाक नहीं दे सकता भाई, क्योंकि बच्चे के तलाक का कोई एतबार नहीं, ना मजनून की तलाक का एतबार है ना बच्चे की, तो बच्चा फिर बालिग हुआ, बालिग होने के बाद उसने तलाक दी है, लेकिन इस दौरान फिर दोबारा जिमा नहीं किया, वही एक जिमा पाया गया था, बाद में तलाक दे दी बालिग होने के बाद, क्या तो क्या वो जिमा काफी है? अब ये औरत पहले खावन से दोबारा निकाह कर सकती है, तो याद रखो इंदल अहनाफ ये बच्चा भी मुहल्लिल बन जाएगा, लिहाजा ये वती काफी है। तो कहते हैं वसबीयुल मुराहिक फी तहलील कल बालिगी, और बालिग होने के करीब जो बच्चा है, फी तहलील वो भी हलाल करने में, कल बालिगी किसकी तरह है, बालिग की तरह है, लिवजूद दुखूल फी निकाहिन सहीहिन, इस वजह से कि दुखूल पाया गया सहीह निकाह में, वली ने इसका निकाह करवा दिया तो निकाह सही हुआ और फिर उसके अंदर दुखूल भी पाया गया। वह हुआ शर्त बिन नस्सी, और निकाह सही के अंदर दुखूल का पाया जाना वो शर्त है, बिन नस्सी किसकी वजह से, नस की वजह से, हदीस में जिक्र आ गया या किताबुल्लाह से इशारतुन नस, ये बात मालूम हो चुकी भाई। तो कहते हैं वह तो वह हुआ शर्त बिन नस्सी, और ये निकाह सही में दुखूल जो है ये नस की वजह से शर्त है। वह मालिकुन रहिमहुल्लाह तआला युखालिफु ना फीही, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह इसमें हमारी मुखालफत करते हैं, वो फरमाते नहीं, सबीय मुराहिक की वती इससे औरत पहले खावंद के लिए हलाल नहीं होगी। भाई मैंने बताया दरअसल उनके नजदीक इंजाल शर्त है भाई, और जो बच्चा अभी बालिग ही नहीं वहां तो इंजाल का इम्कान ही नहीं है, लिहाजा इसलिए उनके नजदीक ये सभी ये मुराहिक हलाल नहीं करेगा। तो कहते हैं वह मालिक उन रहमहुल्लाह ताला युखालिफु नाफीही, और इमाम मालिक रहमहुल्लाह इसके अंदर हमारी मुखालफत करते हैं। वल हुज्जतु अलैही मा बयन्नाहु, और दलील उनके खिलाफ वो है जो हमने बयान कर दी कि इंजाल एक कैदे जायद है, कोई दलील इस पर मौजूद नहीं है। وَفَسَّرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ, اور امام محمد رحم اللہ نے جامع صغیر کے اندر اس مراہق کی تفسیر کی ہے. امام محمد نے جامع صغیر میں تفسیر کی ہے. تو کہتے ہیں وَفَسَّرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَالَ, اور امام محمد رحم اللہ نے اس مراہق کی تفسیر کی ہے جامع صغیر میں, وَقَالَ, اور فرمایا ہے, غلام لم يبلغ, کہ ایسا لڑکا جو ابھی بالغ نہیں ہوا, وَمِثْلُهُ يُجَامِعُ, اور اس جیسا لڑکا جمع کر سکتا ہو, وَمِثْلُهُ يُجَامِعُ, اور اس جیسا لڑکا جمع کر سکتا ہو. تو یہ لڑکا جو ہے جَامَعَ امْرَأَةً, اس نے صحبت کی بیوی سے, وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ, تو اس عورت پر غسل واجب ہو جائے گا, وَأَحَلَّهَا عَلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ, اور یہ لڑکا اس عورت کو حلال کر دے گا پہلے خاوند پر. یہاں تک سارا امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے. کیا قول تھا ان کا؟ وہ فرماتے ہیں غلام لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرأة وجب عليها الغسل واحلها على الزوج الاول, کہ یہ صحبت کر لیتا ہے تو بیوی پر غسل واجب, خود اس لڑکے پر غسل واجب نہیں, کیونکہ یہ ابھی بالغ نہیں ہوا بھائی, یہ احکام شرعیہ کا مکلف نہیں ہے بھائی, تو یہ ابھی بالغ نہیں ہے, تو لہذا یہ عورت پر غسل واجب ہو گیا اور اس نے اس عورت کو حلال کر دیا پہلے خاوند پر. وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ, اب صاحب ہدایہ امام محمد رحمہ اللہ کے کلام کا معنی بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ, اور امام محمد رحمہ اللہ کے اس کلام کا معنی یہ ہے کہ اَنْ يَتَحَرَّكَ آلَتُهُ وَيَشْتَهِ, کہ وہ لڑکا ایسا ہو, اَنْ يَتَحَرَّكَ آلَتُهُ, کہ اس کے آلہ تناسل میں حرکت ہو, وَيَشْتَهِ, اور اس کو شہوت آتی ہو, یعنی ایسا لڑکا ہے جو بالغ نہیں ہوا لیکن اس کو شہوت آتی ہے. وجہ یہ کہ حدیث کے اندر جو ہے, حدیث کے اندر دونوں طرف سے شہد چکھنے کا ذکر ہے, یعنی معلوم ہوا دونوں طرف سے لذت اٹھانے کا ذکر ہے, اور لذت تو تبھی ہو سکتی ہے جب لڑکے میں شہوت ہوگی, شہوت نہیں تو لذت بھی نہیں بھائی. تو اس لیے کہا کہ وَيَشْتَهِ, اور اس کو شہوت بھی آتی ہو, وَإِنَّمَا وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا, بھئی عورت پر کیوں غسل واجب ہے, اب وہ ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں وَإِنَّمَا وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا, اور عورت پر غسل واجب ہوگا, لِلْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ, خِتَان کہتے ہیں ختنے کا مقام, مراد شرمگاہ ہے, لِلْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ, دو شرمگاہوں کے ملنے کی وجہ سے, یعنی دخول پایا گیا ہے اور دخول کی وجہ سے عورت کا ماں بھی نازل ہوتا ہے, دخول کی وجہ سے عورت کا ماں بھی اترے گا, یعنی جیسے انزال کی وجہ سے مرد کی منی خارج ہوتی ہے, اسی طرح اس دخول کی وجہ سے عورت کا ماں بھی اترتا ہے بھائی, بات سمجھ میں آ گئی. اور اس عورت کا نزول ماں وہ تو غسل کا سبب ہے, جب انزال ہوگا تو کیا ہوگا, غسل واجب ہوگا, تو جب اس عورت میں بھی نزول ماں ہوگا تو غسل واجب ہوگا, اور نزول ماں وہ تو چھپا ہوا ہے, عورت کا نزول ماں تو ہمیں نظر نہیں آتا, تو اس کا جو سبب ہے یعنی وتی, اسی پر دار و مدار ہو جائے گا حکم کا, کہ جب بھی وتی پائی جائے یعنی ادخال پایا جائے تو عورت پر غسل واجب ہو جائے گا. کہتے ہیں وَإِنَّمَا وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا لِلْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ, اور اس عورت پر غسل واجب ہے دو شرمگاہوں کے مل جانے کی وجہ سے, یعنی دخول کے پائے جانے کی وجہ سے, وَهُوَ سَبَبٌ لِنُزُولِ مَائِهَا, اور یہ سبب ہے اس عورت کے ماں کے اترنے کا, وَالْحَاجَةُ إِلَى الْإِيجَابِ فِي حَقِّهَا, اور واجب کرنے کی حاجت صرف اس عورت کے حق میں ہے, صرف اس عورت پر غسل واجب ہوگا, وَأَمَّا لَا غُسْلَ عَلَى الصَّبِيِّ, اور باقی جو بچہ ہے تو اس پر غسل نہیں ہے, وَإِنْ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ تَخَلُّقًا, بچے پر غسل واجب نہیں کیونکہ بچہ احکام شرعیہ کا مکلف ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَأَمَّا لَا غُسْلَ عَلَى الصَّبِيِّ, باقی بچے پر غسل نہیں ہے, وَإِنْ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ, اگرچہ بچے کو بھی غسل کا حکم دیا جائے گا کہ غسل کر لے, تَخَلُّقًا, تخلق کا معنی ہے عادت اختیار کرنا, عادت اختیار کرنا, باب تفاعل ہے نا, باب تفاعل کے اندر تکلف والا معنی پایا جاتا ہے, بناوٹ والا معنی پایا جاتا ہے, تو لہذا تخلقاً اس عادت کو اختیار کرنے کے طور پر بچے کو حکم دیا جائے گا, اور جب ابھی ایک چیز کی عادت نہیں ہے और आप उसको इख्तियार करना चाहते हैं तो आपको तकल्लुफ से काम लेना पड़ता है, बनावट से काम लेना पड़ता है, आदत नहीं है, लेकिन आप बार बार करते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाती है। आदत के अंदर तो तकल्लुफ नहीं होता, लेकिन अभी जब आदत बनी नहीं है तो क्या होगा, तकल्लुफ से काम लेना पड़ेगा। तो देखो साहिब हिदायत की फसीह बलीग इबारतें हैं, एक लफ्ज के जरिए वो कितनी गहरी बात की तरफ इशारा फरमा देते हैं। तो कहते हैं वह इन काना युमरु बिही तखल्लुकन, अगरचे इस बच्चे को भी गुसल का हुक्म दिया जाएगा तखल्लुकन आदत इख्तियार करने के लिए। आगे देखिए काल अववत उल मौला अमतहुला युहिल्लुहा अली अन्नल गायत निकाह जौज। सूरत मसला यह, एक शख्स ने एक बांदी से निकाह किया था, इस शख्स ने इस बांदी को दो तलाकें दे दी तो हुरमत मुगल्लजा आ गई, और अब ये बांदी इस खावन के लिए उसी वक्त हलाल होगी जब किसी और खावन से ये औरत निकाह करे और वो सोहबत भी करे और फिर तलाक दे। तो सवाल पैदा हुआ कि अगर इद्दत के बाद आका के लिए जब बांदी हलाल हो गई, आका सोहबत कर ले, तो क्या आका भी मुहल्लिल बन जाएगा, क्या पहले खावन के लिए फिर निकाह जायज हो जाएगा? कहते हैं नहीं, कुरान के अंदर जौज की कैद है, आका का जिक्र नहीं है, लिहाजा जौज आखर निकाह करेगा और सोहबत करेगा फिर बांदी हलाल होगी, वैसे हलाल नहीं भाई। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं ववत उल मौला अमतहु, और आका का अपनी बांदी से वती करना ला युहिल्लुहा, ये उसको हलाल नहीं करेगा, लिअन्नल गायत निकाहुज ज़ौजी, इसलिए क्योंकि गाया जो जिक्र किया गया है निकाहुज ज़ौजी वो खावंद का निकाह है भाई। व इजा तज़व्वजहा बिशर्त तहलील फन निकाह मकरूहुन। अच्छा भाई, सूरत मसला यह, एक शख्स ने अपनी बीवी को तीन तलाकें दे दी और बाद में अब उस वक्त गुस्से में तो तीन तलाकें दे दी लेकिन बाद में नदामत हुई, अब वो दोबारा इस औरत से निकाह करना चाहता है लेकिन अब निकाह की कोई सूरत नहीं। हां फिर वो यूं करता है, किसी दूसरे शख्स से कहता है कि तुम इसके साथ निकाह कर लो, इद्दत के बाद निकाह कर लो और फिर तुम इसके साथ सोहबत करके फिर इसको तलाक दे देना। तो देखो तहलील की शर्त पर निकाह करवा रहा है, तहलील की शर्त पर कि तुम मेरे लिए इस औरत को हलाल बना दो दोबारा भाई, तो ये तहलील की शर्त पर निकाह करवा रहा है, और याद रखो तहलील की शर्त पर निकाह करवा रहा है तो ये मकरूह है, और मकरूह भी कौन सा है, मकरूह है तहरीमी है भाई, हराम के करीब है। अलबत्ता अगर वो दूसरा खावन निकाह के बाद वती करता है और फिर छोड़ देता है तो औरत पहले खावन के लिए हलाल हो जाएगी। ये अमल, ये तहलील की शर्त पर निकाह जो है अगरचे ये मकरूह था लेकिन बहरहाल औरत हलाल हो जाएगी पहले खावंद के लिए। तो कहते हैं वईजा तज़व्वजहा बिशर्ती तहलीली, और जब इस औरत से निकाह किया किसी शख्स ने बिशर्ती तहलीली हलाल कर देने की शर्त पर, फन निकाह मकरूहुन, तो ये निकाह मकरूह है। और याद रखना फिका की किताबों में मकरूह का लफ्ज मुतलकन आए तो इससे मकरूह तहरीमी मुराद होता है, तो ये निकाह जो है मकरूह तहरीमी है यानी हराम के करीब है। लिकौलिहि अलैहि सलातु वस्सलाम, इस वजह से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, कि अल्लाह ताला की लानत हो मुहल्लिल पर और मुहल्लल लहू पर। मुहल्लिल वो जो दूसरा खावन है जो हलाल करने वाला है, वो दूसरा खावन क्या करता है, औरत को पहले खावन के लिए हलाल कर देता है, तो दूसरा खावन हुआ मुहल्लिल, और किसके लिए हलाल किया है पहले खावन के लिए, तो वो हुआ मुहल्लल लहू, मुहल्लल लहू जिसके लिए हलाल किया गया है। तो हदीस में मुहल्लिल पर भी लानत का जिक्र है और मुहल्लल लहू पर भी लानत का जिक्र है भाई। तो कहते हैं लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहि सलाम के इस फरमान मुबारक की वजह से कि आपने फरमाया लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, कि अल्लाह ताला की लानत हो हलाल करने वाले पर भी और जिसके लिए हलाल किया गया उस पर भी। वहादा हुआ महमिलुहू, और यही जो है इस हदीस का महमिल है, और यही इस हदीस का महमिल है, इसको अच्छी तरह समझ लें भाई, यही इस हदीस का महमिल है। माना यह है कि यह जो तहलील की शर्त पर कोई निकाह करता है यह है इस हदीस का महमिल। हदीस में तो मुतलक आया है कि अल्लाह मुहल्लिल पर भी लानत फरमाए और मुहल्लल लहू पर भी, لیکن مطلقاً ہر محلل نہیں مراد بھائی بالاتفاق تمام فقہا کے نزدیک. مثلاً دیکھو ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی، بعد میں اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور پھر وہ عورت اسی کے گھر رہی، دوسرے خاوند کے گھر رہی، عرصے بعد کسی وقت اس دوسرے خاوند نے طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس عورت کا نکاح پہلے خاوند سے جائز ہے. تو وہ دوسرا خاوند محلل بنا یا نہیں؟ وہ بھی محلل بنا، لیکن حدیث میں وہ مراد نہیں ہے بھائی، کیونکہ وہاں تو تحلیل کی شرط پر اس نے نکاح نہیں کیا تھا، اس نے تو پوری زندگی کے لیے نکاح کیا تھا بھائی. تو معلوم ہوا حدیث کے اندر مطلقاً ہر محلل مراد نہیں ہے بالاجماع بھائی. تو پھر کون سا محلل مراد ہے؟ تو بتلا رہے ہیں کہ یہ جو تحلیل کی شرط پر نکاح کرتا ہے، جو تحلیل کی شرط پر نکاح کرتا ہے کہ نکاح کرو گے، صحبت کرو گے اور پھر طلاق دے دو گے تاکہ میرے لیے حلال ہو جائے، میں پھر اسے عدت کے بعد نکاح کروں گا، تو یہ جو تحلیل کی شرط پر جو نکاح کرتا ہے، یہ والا محلل اور محلل لہو، یہ اس حدیث کا محمل ہیں، یعنی حدیث ان پر محمول ہے
جی.
تو کہتے ہیں وہذا ہوا محملہ، اور یہی اس حدیث کا محمل ہے، یعنی مطلقاً ہر محلل مراد نہیں، یہ والا محلل جو تحلیل کی شرط پر نکاح کرتا ہے. جبکہ بعض علماء نے کہا کہ وہذا ہوا محملہ، یہی اس حدیث کا محمل ہے، انہوں نے اور معنی کیا. وہ فرماتے کہ جو متن میں آیا فن نکاح مکروہ لقوله علیہ الصلاۃ والسلام لعن اللہ المحلل والمحلل له، تو یہ جو متن کے اندر نکاح کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، یہ اس حدیث کا محمل ہے بھائی. وجہ یہ کہ بہت سے فقہا فرماتے ہیں یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، تحلیل کی شرط پر جو نکاح کیا جائے گا، بہت سے فقہا کیا فرماتے ہیں، یہ نکاح ہی نہیں ہوگا، جب نکاح نہیں تو عورت پہلے خاوند کے لیے حلال بھی نہیں ہوگی بھائی. تو فرما رہے کہ اس حدیث کا یہی محمل ہے، یعنی اس تحلیل کی شرط پر اگر کوئی نکاح کرے گا تو وہ نکاح فاسد نہیں ہوگا، ہو جائے گا، البتہ مکروہ ہے بھائی، البتہ مکروہ ہے. تو یہ ہے اس حدیث کا محمل کہ یہ نکاح کیا ہوگا، مکرو ہوگا، فاسد نہیں ہوگا، یہ معنی ہے. وہذا ہوا محملہ، اور یہی اس حدیث کا محمل ہے. جبکہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث کا محمل وہ ہے جو اجرت پر اس طرح کا نکاح کرتا ہے، اجرت لے کر تحلیل کرنا، یہ اس پر محمول ہے، ان کے بارے میں لعنت کا ذکر ہے. مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں، اب نکاح کی کوئی صورت نہیں، محلل چاہیے بھائی، تو وہ ایک شخص سے کہتا ہے کہ آپ میری بیوی سے نکاح کر لیں، صحبت کر لیں اور پھر اسے طلاق دے دیں. وہ کہتا ہے میں اجرت لوں گا، مجھے 50,000 روپے آپ دیں یا مجھے 1,00,000 روپیہ دیں تو پھر میں یہ کام آپ کا کر دوں گا بھائی. تو یہ جو اجرت لے کر محلل بن رہا ہے، یہ اس حدیث کا محمل ہے بھائی، اس کے بارے میں لعنت کا ذکر آیا ہے بھائی، کہ یہ والا محلل اور محلل لہو، اس کے بارے میں لعنت کا ذکر ہے بھائی. چنانچہ اسی لیے بعض احادیث کے اندر یہ جو اجرت لے کر محلل بنتا ہے، اس کو تیسے مستعار کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ تیسے مستعار. تیسن، تا ہے دو نقطوں والی یا اور سین، تیسن یاد رکھو، یہ بکرے کو کہتے ہیں. تیس کسے کہتے ہیں؟ بکرے کو کہتے ہیں. مراد نر جانور ہے مطلقاً بھائی. بھائی دیکھتے ہیں آپ دیہات کے اندر کسی بکری یا گائے وغیرہ کو حاملہ کروانا ہو تو نر جانور کے پاس اس کو لے کر جاتے ہیں اور جفتی کرواتے ہیں، اور اس پر بھی بعض لوگ اجرت لیتے ہیں، جن کے پاس نر جانور ہوتا ہے وہ اجرت لیتے ہیں. یاد رکھو یہ اجرت لینا حرام ہے بھائی. تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ اجرت لے کر عورت کو حلال کر رہا ہے. تو حدیث میں اس کو تیسے مستعار کہا گیا ہے. مستعار جیسے کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے مانگ لی جائے، جیسے مہمان آئے تو ہمسایوں سے برتن مانگ لیے جاتے ہیں استعمال کے لیے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عاریت، عاریتن کوئی چیز استعمال کے لیے لینا ہے. تو یہاں پر بھی اس شخص کو بعض احادیث میں یہ جو اجرت لے کر محلل بنتا ہے، اس کو تیسے مستعار کہا گیا ہے. मालूम हुआ ये हदीस में इसके बारे में लानत का जिक्र है। बात समझ में आ गई, चुनाचे इसीलिए उसको तैसे मुस्तार कहा गया है भाई। तो कहते हैं वहादा हुआ महमिलूहु, तो ये है इस हदीस का महमिल। फइन तल्लकहा बाद वतइहा हलत लिल अव्वली, साहिब हिदायत ने आपको बतलाया कि तहलील की शर्त पर निकाह करना मकरूह है, लेकिन अगर कर लेगा तो औरत हलाल हो जाएगी। वो अब जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं फइन तल्लकहा बाद वतइहा, तो अगर इस दूसरे खावन ने तलाक दे दी इसके इस औरत के साथ वती करने के बाद, कौन सा दूसरा खावन जिसने तहलील की शर्त पर निकाह किया था, तो इसने तलाक दे दी औरत से सोहबत करने के बाद, हल्लत लिल अव्वली, तो ये औरत पहले खावन के लिए हलाल हो जाएगी। लिवजूद दुखूल फी निकाह सहीहिन, इसलिए क्योंकि निकाह सही के अंदर दुखूल पाया गया। इदिन निकाह ला यबतुलु बिशर्ती, इसलिए क्योंकि निकाह जो है वो शर्त से बातिल नहीं होता। ये बात पहले भी जिक्र हो चुकी, बैय के अंदर अगर आप कोई शर्त लगाते हैं जिसमें बाय या मुश्तरी का फायदा है तो इस सूरत में बैय ही फासिद हो जाती है, जबकि निकाह के अंदर अगर शर्त फासिद लगाई जाए तो वो शर्त फासिद है और निकाह सही है। तो यहां पर भी उसने तहलील की शर्त पर निकाह किया है तो वो शर्त बातिल और निकाह सही, और जब निकाह सही हो गया और उसके बाद दुखूल भी पाया गया तो अब औरत पहले खावन के लिए हलाल हो गई। यह माना है इज़िन निकाहु ला यबतुलु बिशर्ती, इसलिए क्योंकि निकाह शर्त से बातिल नहीं होता। वान अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है भाई, ऊपर मतन में आ गया, जाहिर रिवायत क्या है कि तहलील की शर्त पर भी निकाह करेगा कोई शख्स तो यह मकरूह तो है लेकिन औरत पहले खावन के लिए हलाल हो जाएगी। यह किस में है? जाहिर रिवायत यानी मतन के अंदर आ गया, लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से और इसी तरह इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से और भी रिवायतें हैं, अब वो जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वान अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है कि अन्नहु यफसुदुन निकाह, कि निकाह ही फासिद है, ये निकाह हुआ ही नहीं, ये निकाह फासिद है। लिअन्नहु फी मानल मुअक्कति फीही, इसलिए क्योंकि यह मुअक्कत फीह के माना में है। लिअन्नहु फी मानल मुअक्कति फीही, इसलिए क्योंकि ये वाला जो निकाह है जो तहलील की शर्त पर किया गया है, फी मानल मुअक्कति, ये उस निकाह के माना में है, अल मुअक्कति के वक्त की कैद लगाई गई है, फी ही उसके अंदर
जी।
तो ये निकाह जो है ये निकाह मुअक्कत के दर्जे में हो गया क्योंकि उसने क्या कहा है, सोहबत के बाद आप इसे छोड़ देंगे, तो लिहाजा ये निकाह मुअक्कत के दर्जे में हो गया, यानी ये मुता हुआ, और मुता तो बिल इत्तेफाक जायज नहीं है, लिहाजा ये भी जायज नहीं, ये निकाह ही फासिद है भाई। तो कहते हैं वान अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह ताला अन्नहु यफसुदुन निकाह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि निकाह ही फासिद है। लिअन्नहु फी मानल मुअक्कति फीही, इसलिए क्योंकि ये निकाह जो है निकाह मुअक्कत के माना में है। वला युहिल्लुहा अलल अव्वली, और ये हलाल नहीं करेगा उस औरत को, अलल अव्वली पहले खावन पर, लिफसादिही अपने फासिद होने की वजह से, कि निकाह फासिद है तो यह हलाल नहीं करेगा। नुआन मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह ताला, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से रिवायत है कि अन्नहु यसिहु निकाहु, कि निकाह तो सही है, निकाह तो सही है, लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि तहलील की शर्त लगाई है लेकिन शर्त बातिल और निकाह सही भाई, क्योंकि निकाह शुरूते फासिदा से बातिल नहीं होता। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से रिवायत है अन्नहु यसिहु निकाहु लिमा बैयन्ना, कि ये निकाह सही है उस वजह से जो हमने बयान कर दिया। वला युहिल्लुहा अलल अव्वली, लेकिन ये निकाह पहले खावन पर बीवी को हलाल नहीं करेगा। लिअन्नहु इस्तअजला मा अखरहु शरउ, लिअन्नहु इस्तअजला, इसलिए क्योंकि खावन ने जल्दी तलब किया है मा उस चीज को, अखरहु शरउ जिसको शरीयत ने मुअख्खर किया था। फयुजाजा बिमनअ मक्सूद दी, लिहाजा उसको बदला दिया जाएगा उसके मकसूद को रोक कर। कमा फी कत्लिल मूरिसी, जैसे कि कत्ले मूरिस में है भाई। देखिए आपने पढ़ा है भाई कि वारिस अगर अपने मूरिस को कत्ल कर दे तो फिर उसको मीरास नहीं मिलेगी, बेटा अगर अपने बाप को कत्ल कर देता है तो फिर बेटा उसका वारिस नहीं बनेगा, बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। वजह यह कि दरअसल दिलों में बदगुमानी आती है कि शायद इसने बाप को इसीलिए जल्दी कत्ल किया है कि जल्दी मरे और मुझे मीरास के अंदर माल मिले। तो शरीयत ने उसका क्या बदला दिया, इसको माल से ही बिल्कुल पूरे तौर पर महरूम कर दिया। यहां पर भी खावन ने तीन तलाकें दे दी हैं और अब यह औरत इस खावन के लिए हलाल नहीं है। अब यह औरत किसी और खावन से निकाह करेगी और फिर जिंदगी में कभी उस खावन का इंतकाल हुआ या उसने तलाक दे दी तो फिर यह पहले खावन के पास आ सकती है। तो शरीयत ने देखो इस पहले खावन के लिए जो हिल्लत थी उसको मुअख्खर कर दिया। पता नहीं किस वक्त अब वो हलाल होती है या औरत, पता नहीं वो दूसरा खावन तलाक देता भी है या नहीं, पता नहीं उसका इसकी जिंदगी में इंतकाल होता भी है या नहीं। तो शरीयत ने इस खावन के लिए उस पहली बीवी का हलाल होना मुअख्खर किया हुआ था और ये उसको जल्दी तलब करना चाहता है और हलाला करवाता है, तहलील की शर्त पर निकाह करवा रहा है। तो लिहाजा जैसे वारिस मीरास पाने में जल्दी करता था मूरिस को कत्ल करके, तो उसको मीरास से ही महरूम कर दिया जाता था। तो यहां पर भी खावन भी उस चीज को जल्दी तलब करना चाहता है जिसको शरीयत ने मुअख्खर किया था, लिहाजा इसको भी यह बदला दिया जाएगा कि इस तहलील की शर्त पर निकाह की वजह से औरत इसके लिए हलाल होगी ही नहीं भाई, यह औरत इसके लिए हलाल ही नहीं होगी भाई। दलील समझ में आ गई। तो कहते हैं वला युहिल्लुहा अलल अव्वली, और ये वाला जो निकाह है जो तहलील की शर्त पर किया गया ये हलाल नहीं करेगा इस औरत को अलल अव्वली पहले खावन पर, लिअन्नहु इस्तअजला मा अख्खरहु शरउ, इसलिए क्योंकि खावन ने जल्दी तलब किया है उस चीज को जिसको शरीयत ने मुअख्खर किया था। फयुजाजा बिमनई मकसूदिही, लिहाजा इसको बदला दिया जाएगा बिमनई मकसूदिही कि इसके मकसूद को रोक दिया जाएगा। कमा फी कत्लिल मूरिसी, जैसे कि मूरिस के कत्ल करने में होता है। तो बहरहाल ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से एक रिवायत है, वो फरमाते हैं निकाह ही फासिद है, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से रिवायत है कि निकाह तो सही है लेकिन ये शख्स मुहल्लिल नहीं बनेगा, ये औरत पहले खावंद के लिए हलाल नहीं होगी इस निकाह की वजह से। लेकिन बहरहाल जाहिर रिवायत में ऊपर मतन के अंदर आ गया कि औरत पहले खावंद के लिए हलाल हो जाएगी भाई। आगे देखिए, व इदा तल्लक अल हुर्रा तत्लीकतन औ तत्लीकतैन वन्क़ज़त इद्दतुहा व तज़व्वजत बिज़ौजिन आख़र सुम्मा आदत इला ज़ौजिल अव्वल आदत बिसलासी तत्लीकातिन। सूरत मसला ये, एक आजाद औरत है, उसको खावन ने एक या दो तलाकें दे दी और फिर उसके बाद इस औरत ने किसी और से निकाह किया और उसके बाद फिर दोबारा पहले खावन के पास ये आई। तो अब जब ये दोबारा पहले खावन के पास आई है तो ये खावन अब कितनी तलाकों का मालिक होगा, ये मसला पहले भी जिक्र हो चुका है भाई, चंद सफे कबल ये मसला जिक्र हुआ था। तो शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि ये जो दूसरा खावंद है ये पहली तमाम तलाकों को गिरा देता है, चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो, और सबको गिरा देगा और अब औरत नई हिल्लत के साथ आई है और तो इसमें खावन दोबारा तीन तलाकों का मालिक होगा। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह और इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर पहले खावन ने तीन तलाकें दी थीं फिर तो यह औरत नई हिल्लत के साथ आई है, लिहाजा अब खावन दोबारा तीन तलाकों का मालिक होगा। लेकिन अगर पहले खावन ने एक या दो तलाकें दी थीं तो अब पहला खावन सिर्फ मां बकिया तलाकों का मालिक होगा, यानी अगर पहले एक दी थी तो अब तमाम जिंदगी इसके पास दो तलाकों का हक है, और अगर पहले इसने दो दी थी तो अब तमाम जिंदगी सिर्फ एक तलाक का हक है। ये कौन फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद और इमाम जुफर भाई। मालूम हुआ अगर पहले खावंद ने तीन तलाकें दी हैं तो फिर तो बिल इत्तेफाक जब दूसरे खावंद के बाद दोबारा पहले खावंद के पास आएगी तो दोबारा यह तीन का ही मालिक होगा। लेकिन तीन से कम तलाकें अगर पहले दी थी तो फिर इसमें इख्तिलाफ है। शेखैन के नजदीक यह पहला खावन दोबारा तीन तलाकों का मालिक बनेगा जब निकाह करेगा, जबकि इमाम मोहम्मद और इमाम जुफर फरमाते हैं कि दोबारा तीन का मालिक नहीं बनेगा बल्कि जो बाकी हैं सिर्फ उन्हीं का मालिक बनेगा। तो कहते हैं वही दा तल्लकल हुर्रता तत्लीकतन और तत्लीकतैनी, और जब खावन ने एक आजाद औरत को एक तलाक दे दी और तत्लीकतैनी या दो तलाकें दे दी, वन कजत इद्दतुहा और इस औरत की इद्दत गुजर गई, व तज़व्वजत बिज़ौजिन आखरा और फिर दूसरे खावन ने इसे निकाह कर लिया, व सुम्मा आदत इला ज़ौजिल अव्वली फिर ये औरत वापस लौट आई पहले खावन के पास, आदत भी सलासी तत्लीकातिन तो ये वापस लौटेगी तीन तलाकों के साथ, वयह दिमु जौजुस्सानी और दूसरा खावन जो है वो गिरा देता है मा दूना सलासी तीन से कम तलाकों को भी, कमा यह दिमु सलासा जैसे वो तीन को गिराता है, जैसे वो तीन तलाकों को गिराता है इसी तरह तीन से कम तलाकों को भी गिरा देगा और पहला खावन अब दोबारा तीन तलाकों का मालिक बनेगा। वहादा इंदा अबी हनीफा तवा अबी यूसुफ रहिमहुमल्ला और ये शेखैन रहिमहुमल्ला के नजदीक है, वकाल मुहम्मद रहिमहुल्लाहु ताला ला यहदिमु मा दूना सलासी, जबकि इमाम मुहम्मद रहमल्ला फरमाते हैं कि जो दूसरा खावंद है ये तीन से कम को नहीं गिराता, लिअन्नहु गायतुन लिलहुर्मति बिन्नस्सी। अच्छा अब इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील आ गई भाई, दलील सुनिए इमाम मोहम्मद की, वो फरमाते हैं लिअन्नहु गायतुन लिलहुर्मति बिन्नस्सी, वो फरमाते हैं कि ये जो दूसरा खावंद है ये गाया है, किस चीज की गाया, फला तहिल्लु लहु मिन बादु, आदम हिल्लत की बात पीछे आई थी कि ये औरत अब पहले खावंद के लिए हलाल नहीं जब उसने तीन तलाकें दे दी हैं, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये जो दूसरा खावंद है ये गाया है, किसके लिए, उस पहले खावंद की अदम हिल्लत के लिए जी। उसकी अदम हिल्लत के लिए ये गाया है, जब ये दूसरा खावंद आएगा तो ये औरत पहले खावंद के लिए हलाल हो जाएगी। तो कहते हैं लिअन्नहु गायतुन लिलहुर्मति बिन्नस्सी, इसलिए क्योंकि ये जो दूसरा खावंद है ये गाया है लिलहुर्मति, यहां हुरमत से मुराद हुरमत मुगल्लजा है, क्योंकि तीन तलाकों से कौन सी हुरमत आती है, हुरमत मुगल्लजा, तो ये दूसरा खावन मुहल्लिल बनेगा, यानी मुहल्लिल बनेगा, हिल्लत साबित करेगा और हुरमत को खत्म करेगा, कौन सी हुरमत खत्म करेगा, हुरमत मुगल्लजा को, किसको खत्म करेगा, हुरमत मुगल्लजा को ये दूसरा खावन खत्म करेगा। तो कहते हैं लिअन्नहु गायतुन लिलहुर्मति बिन्नासी, इसलिए क्योंकि ये जो दूसरा खावंद है ये हुरमत मुगल्लजा की गाया है, बिन्नासी नस की वजह से, फयकूनु मुनहियन, तो ये दूसरा खावंद जो है अनहा युनही का माना है खत्म करना, फयकूनु मुनहियन, तो ये खावंद जो है उस हुरमत मुगल्लजा को खत्म करने वाला होगा। आयत के अंदर दूसरे खावंद को गाया बनाया गया है, और किस चीज का गाया है, हुरमत मुगल्लजा का गाया है, दूसरा खावंद आएगी तो हुरमत मुगल्लजा खत्म हो जाएगी, तो दूसरा खावंद हुरमत मुगल्लजा को खत्म करने वाला है, और जब पहले खावंद ने सिर्फ एक या दो तलाकें दी हैं, पहले खावंद ने एक या दो तलाकें दी हैं, फिर तो हुरमत मुगल्लजा आई नहीं, जब हुरमत मुगल्लजा आई नहीं तो यह दूसरा खावंद उसको खत्म करने वाला भी नहीं, दूसरा खावंद किसको खत्म करने वाला है, हुरमत मुगल्लजा को, और जब पहले खावंद ने अभी सिर्फ एक या दो तलाकें दी हैं तो हुरमत मुगल्लजा नहीं, जब हुरमत मुगल्लजा नहीं तो ये उनको खत्म करने वाला भी नहीं है, लिहाजा वो तलाकें अभी भी हैं और अब खावंद सिर्फ मां बकिया का मालिक बनेगा भाई। तो कहते हैं फयकून मुनहियन, तो ये दूसरा खावन जो है उस हुरमत मुगल्लजा को खत्म करने वाला होगा, वला इन्हा अलिल हुरमति कबल सुबूत, और हुरमत मुगल्लजा का खत्म करना नहीं है उसके साबित होने से पहले, पहले हुरमत मुगल्लजा साबित तो हो फिर दूसरा खावन क्या कर देगा, उसको खत्म करेगा और फिर पहला खावन दोबारा तीन तलाकों का मालिक बनेगा, लेकिन यहां तो हुरमत मुगल्लजा पाई ही नहीं गई। अब हजरत शेखैन रहिमहुमल्ला की दलील आ गई, कहते हैं वलहुमा और शेखैन रहिमहुमल्ला की दलील ये है, कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहि सलाम का ये कौल, लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, कि अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है मुहल्लिल और मुहल्लल लहू पर, अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है मुहल्लिल और मुहल्लल लहू पर, तो ये हदीस दलील है शेखैन रहिमहुमल्ला की भाई। भाई देखिए ये शेखैन रहिमहुमुल्लाह की दलील है कि हुजूर अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, लअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, तो देखो इस हदीस के अंदर इस हदीस के अंदर मुहल्लिल और मुहल्लल लहू पर लानत का जिक्र है, और यह बात पहले जिक्र हो गई कि बाज अइमा के नजदीक तो यह निकाह जो तहलील की शर्त पर किया जाए वो होगा ही नहीं भाई, वो निकाह ही नहीं होगा। जब निकाह नहीं तो औरत भी पहले खावंद के लिए हलाल नहीं होगी, जबकि इंदल अहनाफ निकाह हो जाएगा। इसलिए क्योंकि निकाह किस चीज का नाम है कि आपस की रजामंदी से ईजाब और कबूल कर लिया जाए और गवाह भी मौजूद हों, चाहे तहलील की शर्त थी लेकिन बाहमी रजामंदी से निकाह हुआ और ईजाब और कबूल भी हुआ, तो निकाह सहीह पाया गया भाई। और तहलील की शर्त तो बातिल हो गई क्योंकि निकाह जो है शुरूत बातिला से फासिद नहीं होता, तो निकाह तो सही हो गया। अलबत्ता इंदल अहनाफ ये शौहर सानी, इसकी वजह से औरत पहले खावंद के लिए हलाल हो जाएगी। हां अलबत्ता ऐसा करना मुजिब नफरत और मुजिब लानत है। तहलील की शर्त पर निकाह करना मुजिब नफरत और मुजिब लानत है, यह कबीह काम है, लेकिन अगर ऐसा कर लेंगे तो वो पहले खावन के लिए हलाल हो जाएगी भाई। तो चूंकि ये फेल गैरत और फितरत के खिलाफ है इसलिए हदीस के अंदर लानत का जिक्र किया गया, लेकिन लानत एक शे के मादूम होने की अलामत नहीं है। लानत एक शे के मादूम होने की अलामत नहीं है। अगर वो मादूम है तो फिर लानत किस बात की, अगर उसका एतबार ही नहीं है तो फिर लानत किस बात की। इसी तरह हदीस में आता है अब गजुल हलाल इल्लाह तलाकु, अल्लाह के नजदीक हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा जो है वो तलाक है। देखो मबूज होने के बावजूद तलाक जायज है, मबूज होने के बावजूद तलाक जायज है। तो इसी तरह यहां पर बेशक हदीस में लानत का जिक्र है लेकिन बहरहाल यह निकाह हो जाएगा। अगर यह कल आदम हो, इसका एतबार ही नहीं है, यह निकाह ही नहीं हुआ, तो फिर लानत किस बात की भाई। तो मालूम हुआ हमारे नजदीक तहलील की शर्त पर भी अगर निकाह किया जाएगा, अगरचे यह फेल सख्त नापसंदीदा है, लेकिन बहरहाल औरत पहले खावन के लिए हलाल हो जाएगी भाई। और दीगर अइमा तो फरमाते हैं कि तहलील की शर्त पर निकाह होगा ही नहीं, लेकिन हमारे नजदीक तहलील की शर्त पर भी निकाह हो जाएगा। और यह हदीस जो है यह खुद यही हदीस दलील है इस निकाह के होने की, क्योंकि हदीस में क्या आया है लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है मुहल्लिल पर भी और मुहल्लल लहू पर भी। हदीस में यह नहीं आया कि अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है उस ज़ौज पर, बल्कि हदीस में क्या आया मुहल्लिल पर। मालूम हुआ वो मुहल्लिल है, अगरचे वो नापसंदीदा काम कर रहा है लेकिन फिर भी उसको हदीस में क्या कहा गया है मुहल्लिल कहा गया है, और वो मुहल्लिल तभी हो सकता है जब ये निकाह सही हो और वो उसका मुहल्लिल होना सही हो भाई, तो उसको तभी मुहल्लिल कहा जा सकता है। मालूम हुआ वो मुहल्लिल है भाई, वो हलाल कर देगा भाई पहले खावंद के लिए बीवी को भाई। तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि ये जो हदीस में लानत का जिक्र है ये उस वक्त है कि जब बाकायदा तहलील की शर्त पर निकाह किया जाए, तो फिर ये लानत का सबब है। और अगर कोई शख्स इजहार नहीं करता लेकिन कोई औरत है उसको पहले खावंद ने तीन तलाकें दी हैं और उसको भी पता है कि पहला खावंद इसके साथ दोबारा निकाह करना चाहता है, तो यह शख्स खैर की नीयत से इस औरत से खुद निकाह करता है और तहलील की शर्त वगैरह वहां नहीं जिक्र करते, लेकिन उस शख्स के अपने दिल में है कि मैं तहलील कर दूंगा और फिर मैं इस औरत को छोड़ दूंगा, तो फुकहा फरमाते हैं इस तरह का शख्स जो कोई शर्त भी जिक्र नहीं करता और अलबत्ता दिल में खैर की नीयत के साथ ये काम करे, औरत से निकाह करे, सोहबत कर ले और फिर उसे छोड़ दे ताकि पहला खावंद उसे निकाह कर सके, तो उम्मीद है कि अल्लाह इसको अजर और सवाब नसीब फरमाएंगे भाई, क्योंकि इसने खैर की नीयत की है। बात समझ में आ गई। तो बहरहाल बात यह चल रही थी शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक इस हदीस के अंदर दूसरे खावंद को मुहल्लिल कहा गया है, और मुहल्लिल उसे कहेंगे जो पहले खावंद के लिए हलाल कर दे। तो कहते हैं वल्लहुमा कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, और शेखैन रहमहुमल्ला की दलील जो है हुजूर अलैहिस्सलाम का यह कौल है लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, कि अल्लाह ताला की लानत हो मुहल्लिल और मुहल्लल लहू पर। सम्माहु मुहल्लिलन, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस ज़ौजे सानी का नाम मुहल्लिल रखा। وَهُوَ الْمُسْبِتُ لِلْحِلِّ اور محلل وہ ہوتا ہے الْمُسْبِتُ لِلْحِلِّ جو حلت کو ثابت کرتا ہے. محلل کسے کہتے ہیں؟ حلال کرنے والا یعنی حلت کو ثابت کرنے والا. توجہ ہے گہری بات صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں. دیکھو یہ خاوند ثانی محلل ہے. جب یہ محلل ہے معلوم ہوا پہلے خاوند کو دوبارہ تین طلاقوں کا حق ملے گا. کس طرح بھائی تین طلاقوں کا حق ملے گا؟ کہتے ہیں اس کو حدیث میں محلل کہا گیا ہے اور محلل اسے کہتے ہیں جو حلت کو ثابت کرے. جو حلت کو ثابت کرے تو کہنا پڑے گا یہ خاوند ایک نئی حلت ثابت کر رہا ہے. وہ پچھلی حلت نہیں ہے یہ بلکہ نئی حلت ہے. تو کہتے ہیں وہو المثبت للحلی اور محلل وہ ہوتا ہے المثبت للحلی جو حلت کو ثابت کرتا ہے. اور جب یہ حلت کو ثابت کر رہا ہے معلوم ہوا نئی حلت آ رہی ہے. اور جب نئی حلت آ رہی ہے معلوم ہوا خاوند اب تین طلاقوں کا مالک ہوگا. وہ پچھلی حلت کے اندر مثلا خاوند نے پہلے صرف ایک یا دو طلاقیں دی تھیں. جب ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو ابھی بھی حلت موجود ہے. ابھی بھی حلت موجود ہے. تو اگر آپ کہیں کہ وہی حلت ابھی تک چل رہی ہے درمیان میں دوسرا خاوند بھی آ گیا لیکن وہی پہلی حلت ہے. پہلے ایک دی تھی تو اب کتنی باقی ہیں طلاقیں؟ دو. اور پہلے دو دی تھی تو اب کتنی باقی ہیں؟ ایک. تو اگر آپ کہیں یہ وہی پہلی حلت چل رہی ہے پھر تو یہ ثانی خاوند محلل نہ ہوا. محلل کا کیا معنی تھا؟ حلت ثابت کرنے والا. حلت ثابت کرنے کا کیا معنی؟ نئی حلت آ رہی ہے. وہی حلت نہیں ہے. اگر وہی حلت ہے پھر تو تحصیل حاصل لازم آئے گا اور تحصیل حاصل تو باطل ہے. کس طرح تحصیل حاصل؟ دیکھو ایک چیز جب آپ کو پہلے سے حاصل ہے تو اس کی تحصیل نہیں کر سکتے. ایک گاڑی آپ کے پاس ہے آپ اس کے مالک ہیں. اب آپ کہتے ہیں میں یہ گاڑی حاصل کرنا چاہتا ہوں. بھائی آپ کو تو یہ پہلے ہی حاصل ہے. یہاں تحصیل ممکن ہی نہیں ہے. تحصیل اس چیز کی جاتی ہے جو آپ کو حاصل نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہے جو چیز حاصل ہو اس کی تحصیل نہیں ہو سکتی. بھائی تحصیل کا کیا معنی؟ جو آپ کو پہلے حاصل نہیں تھی اور پھر حاصل ہو جائے. اور جو چیز پہلے سے حاصل ہو وہاں تحصیل کا کیا معنی؟ بھائی تو تحصیل حاصل باطل ہے. اور یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاوند نے اگر پہلے ایک یا دو طلاقیں دی تھیں پھر درمیان میں زوج ثانی آیا اور پھر پہلے خاوند کے پاس آئی تو اب یہ وہی ماں بقیہ طلاقوں کا مالک ہوگا. تو شیخین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ دوسرے خاوند کو محلل کہا گیا ہے. محلل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو حلت کو ثابت کرتا ہے. معلوم ہوا یہ جس حلت کو ثابت کرے گا وہ نئی حلت ہوگی. وہ پرانی والی حلت نہیں ہے. اگر پرانی والی حلت ہے ابھی بھی تو یہ کیا ہے؟ محلل. حلت کو ثابت کرنے والا. جب پہلے سے حلت موجود ہے تو یہ حلت کو ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ تو تحصیل حاصل لازم آئے گا. حلت تو پہلے سے موجود ہے تو حلت کو ثابت کرنے کا کیا معنی؟ لہذا ماننا پڑے گا یہ جس حلت کو ثابت کرتا ہے یہ وہی ولی نہیں ہے ورنہ تحصیل حاصل لازم آئے گا بلکہ یہ نئی حلت آ رہی ہے. تو جب بھی دوسرا خاوند آئے گا وہ حلت کو ثابت کرے گا یعنی نئی حلت کو ثابت کرے گا پہلے خاوند کے لیے. اور جب یہ نئی حلت کے ساتھ پہلے خاوند کے پاس آئے گی تو وہ ہر صورت میں تین طلاقوں کا مالک ہوگا. پچھلی حلت ختم ہو چکی. دلیل سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل له سماہ محللا. حضور علیہ السلام نے خاوند ثانی کو محلل قرار دیا. اس کا نام محلل رکھا. وہو المثبت للحل اور محلل تو وہ ہوتا ہے جو حلت کو ثابت کرے. اگر وہی پرانی حلت مراد لیتے ہیں تو پھر تو یہ مثبت للحل نہ ہوا کیونکہ پھر تو تحصیل حاصل ہے. لہذا معلوم ہوا یہ نئی حلت ثابت کر رہا ہے. اور جب نئی حلت ہے تو پھر وہ پہلا خاوند دوبارہ تین طلاقوں کا مالک ہوگا. بھائی آگے دیکھیے وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا اور جب خاوند نے بیوی کو تین طلاقیں دے دیں فقالت اور اب صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی کچھ عرصے کے بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور کہنے لگی کہ تم نے جب مجھے طلاقیں دی تھیں میں نے عدت گزاری اور عدت کے گزارنے کے بعد میں نے کسی اور شخص سے نکاح کر لیا تھا और उसने फिर मेरे साथ सोहबत की और उसने फिर मुझे तलाक दे दी और फिर मैंने दोबारा उसकी भी इद्दत गुजारी। अब मैं आपके पास आई हूं, आप मेरे साथ दोबारा निकाह कर लें, पहले खावंद को कहती है। तो कहते हैं अगर खावंद का यह गालिब गुमान हो कि यह औरत सच बोल रही है और मुद्दत भी इतनी है कि इसके अंदर यह सारा कुछ हो सकता है कि औरत इद्दत गुजार सकती है दूसरे खावंद की, तो फिर इस सूरत में खावंद इसके तस्दीक कर सकता है और उसके लिए निकाह जायज हो जाएगा, वो इसे निकाह कर सकता है। जबकि उसका गालिब गुमान भी यह है यह औरत सच बोल रही है और मुद्दत भी इतनी है भाई। तो कहते हैं वईदा तल्लका सलासन, और जब खावंद ने बीवी को तीन तलाकें दे दी, फकालत, तो औरत कहती है, अब बाद में आकर औरत कह रही है, फकालत कद इनकजत इद्दती, कि तहकीक मेरी इद्दत गुजर गई थी, व तज़व्वजतु, और फिर मैंने निकाह कर लिया था, व दखल बिया ज़ौजु, और फिर दूसरे खावंद ने मेरे साथ सोहबत कर ली थी, व तल्लकनी, और फिर उसने मुझे तलाक दे दी, व इनकजत इद्दती, और फिर मेरी इद्दत गुजर गई, वल मुद्दतु तहतमिलु ज़ालिका, और ये मुद्दत इसका इहतिमाल भी रखती है, यानी इतना वक्त गुजर चुका है, जाज़ लिज़्ज़ौजि अन युसद्दिक़हा, तो खावंद के लिए जायज है कि वो इस औरत की तस्दीक करे, इज़ा नफी गालिब जन ही अन्नहा सादिकतुन, जब खावंद का यह गालिब गुमान हो कि यह सच्ची है, लि अन्नहु मुआमलतुन औ अमरुन दीनियुन लि ताल्लुकिल हिल्ली बिही व कौलुल वाहिद फीहा मकबूलुन। वजह यह कहते हैं यह ऐसी चीज है जिसके अंदर एक शख्स की खबर को भी कबूल कर लिया जाता है, एक काबिल एतिमाद शख्स के कौल को भी इनमें कबूल कर लिया जाता है। मसलन कोई दीनी मामला हो, याद रखो दीनी मामले के अंदर एक शख्स की खबर को भी कबूल कर लिया जाता है जब गालिब गुमान हो कि यह सच बोल रहा है। मसलन देखो एक जगह पर थोड़ा सा पानी मौजूद है और कहीं पानी नहीं मिल रहा, लेकिन इस पानी का पता नहीं कि यह पाक है या नापाक है, इतने में एक शख्स आया और उसने आकर आपको बतलाया कि यह पानी पाक है। तो याद रखो अब इस सूरत में आपके लिए तयम्मुम जायज नहीं है, और तो कहीं पानी नहीं मिल रहा लेकिन यह पानी तो मौजूद है और एक शख्स ने भी आपको बता दिया कि यह पानी पाक है, तो अब आपको वुजू करना पड़ेगा इससे भाई, क्योंकि पानी का पाक या नापाक होना यह एक दीनी मामला है और दीनी मामले में एक शख्स की खबर को भी कबूल किया जाता है। या ये इसी तरह है जैसे एक मुसलमान ने कहीं से गोश्त खरीदा, बाद में एक आदमी आया और उसने आकर कहा कि यह तो मजूसी का जिबा किया हुआ जानवर था भाई, तो मुसलमान के लिए अब वो गोश्त खाना जायज नहीं है, क्योंकि गोश्त का हलाल या हराम होना ये एक दीनी मामला है भाई, और दीनी मामले में एक शख्स की खबर को भी कबूल किया जाता है। इसी तरह लोगों के जो मामलात हैं उसके अंदर भी एक शख्स की बात को कबूल किया जाता है। मसलन एक शख्स दूसरे शख्स के पास आया और आकर कहता है कि जैद ने आपको वकील बनाया है, आप उसके लिए एक गाड़ी खरीद लें जी। तो ये देखो तौकील, किसी को वकील बनाना, ये दो आदमियों के दरमियान एक मामला होता है। तो इस तरह का जो मामला हो तो उसके अंदर भी एक आदमी की बात कबूल की जाती है, तो इस शख्स के लिए जायज है कि इसकी बात को कबूल करते हुए जैद के लिए गाड़ी खरीदे। या इसी तरह एक शख्स का गुलाम है और आप जानते हैं गुलाम महजूर होता है, उस पर पाबंदियां होती हैं, वो आका की इजाजत के बगैर ना निकाह कर सकता है ना तिजारत वगैरह कर सकता है। इस गुलाम को आकर किसी ने बतलाया कि भाई तुम्हारे आका ने तुम्हें तिजारत की इजाजत दे दी है जी। तो तिजारत की इजाजत देना यह आका और गुलाम के दरमियान एक मामला है भाई, तो मामले के अंदर भी एक शख्स की बात कबूल कर ली जाती है, तो इस गुलाम के लिए जायज होगा कि अब यह तिजारत शुरू कर सकता है जी। तो मालूम हुआ मामलात के अंदर या इसी तरह दीनी मामला जिसके अंदर हलाल या हराम, पाक या नापाक होने की बात हो, उसके अंदर एक शख्स की बात को भी कबूल कर लिया जाता है। और यहां पर भी इस औरत ने क्या कहा है कि मैं गई थी और इद्दत गुजार कर मैंने निकाह भी किया और फिर दूसरे खावन ने मुझसे सोहबत भी की, फिर उसने मुझे तलाक दे दी और फिर मैंने दोबारा इद्दत भी गुजारी, अब मैं तुम्हारे पास आई हूं, मेरे साथ निकाह कर लो। तो अब देखा जाए तो ये एक मामले की खबर दे रही है कि मैंने किसी और से निकाह किया था, और निकाह भी किसका नाम है, मर्द और औरत के दरमियान एक आकद का नाम है, एक मामले का नाम है, तो ये एक मामले की खबर दे रही है, लिहाजा मामले के अंदर भी एक शख्स की बात को कबूल किया जाता है, तो इस औरत की बात को भी कबूल किया जाएगा। या दूसरे एतबार से देखा जाए तो यह एक दीनी मामले की खबर दे रही है, दीनी मामला बाई एतबार है कि इसकी खबर की वजह से यह औरत खावन के लिए हलाल हो रही है। पहले खावन के लिए पहले तो क्या थी, हराम थी, अब हलाल हो रही है। तो एक एतबार से देखा जाए तो यह जो औरत आकर बतला रही है यह मामले की खबर दे रही है, और मामले के अंदर भी एक शख्स की बात कबूल की जाती है, और दूसरे एतबार से देखा जाए तो एक दीनी अमर है, और दीनी अमर के अंदर भी एक शख्स की बात को कबूल किया जाता है जबकि उसके सच्चा होने का गालिब गुमान हो भाई। तो लिहाजा यहां खावन भी उसकी बात कबूल करके उसे निकाह कर सकता है। कहते हैं लिअन्नहु मुआमलतुन, क्योंकि औरत ने ये जो दूसरे निकाह की खबर दी है वो एक मुआमला है, औ अमरुन दीनीयुन, या वो एक अमरे दीनी है, दीनी मामला है, लितअल्लुकिल हिल्ल बिही, क्योंकि उसके साथ उस औरत के हलाल होने का ताल्लुक है। वकौलुल वाहिदी फीही मा मकबूलुन, और एक शख्स का कौल भी इसके अंदर कबूल किया जाता है। वह गैर मुस्तनकरिन इज़ा कानतिल मुद्दतु तहतमिलुहु, मुस्तनकर भाई इस्तनकर का वैसे माना होता है नापसंद करना, यहां ये इनकार के माना में है। वह हुआ गैर मुस्तनकरिन, और बीवी की इस खबर का इनकार नहीं किया जाएगा। इदा कानतिल मुद्दतु तहतमिलुहु, जब मुद्दत भी इसका इहतमाल रखती है। वख्तलफू फी अदना हादिहिल मुद्दति, और फुकहा ने इख्तिलाफ किया है इसकी अदना मुद्दत में, यानी कम से कम कितनी मुद्दत में आए औरत तो उसका एतबार किया जाएगा। तो कहते हैं वक्त लफूफी अदना हादिहिल मुद्दती, और उलमा फुकहा ने इख्तिलाफ किया है इसकी अदना मुद्दत में। वसनुबय्यिनु हाफी बाबिल इद्दती, और अन करीब हम इसको बयान करेंगे इद्दत के बाब में। साहिब हिदाया क्या फरमा रहे हैं कि इद्दत के बाब में हम बयान करेंगे कि कम से कम कितनी मुद्दत के अंदर औरत आए तो उसका यकीन किया जा सकता है। लेकिन शारहीन फरमाते हैं कि साहिबे हिदाया किताबुल इद्दत के अंदर यह जिक्र करना भूल गए भाई, उन्होंने वहां यह चीज जिक्र नहीं फरमाई। और फिर शारहीन जिक्र फरमाते हैं कि इस सिलसिले में इमाम साहब फरमाते हैं कि कम अज कम दो माह के बाद औरत आए तो फिर उसका यकीन किया जा सकता है भाई, दो माह के बाद। और साहिबैन फरमाते हैं 39 दिन के बाद, तो इमाम साहब के नजदीक कम अज कम 60 दिन के बाद औरत आकर कहे तो तब उसका यकीन किया जा सकता है, जबकि साहिबैन के नजदीक कम अज कम 39 दिन के बाद औरत आकर कहे तो उसका यकीन किया जा सकता है। किस तरह 60 दिन किस तरह है इमाम साहब के नजदीक और 39 दिन साहिबैन के नजदीक किस तरह है? तो देखो, खावंद ने बीवी को 3 तलाकें दी हैं, तो इन 3 तलाकों के बाद जो इद्दत है वो तो औरत ने इसी खावंद के पास गुजारी है, क्योंकि इद्दत के दौरान नफका और रिहाइश देना किसके जिम्मे है, इसी खावन के जिम्मे। तो यहां वो पूरे इद्दत गुजार कर चली गई, और फिर उसके बाद कुछ मुद्दत के बाद आई तो वो कितनी मुद्दत होनी चाहिए? तो याद रखो, कहते हैं इमाम साहिब के नजदीक कम अज कम 60 दिन भाई, कम अज कम 60 दिन के अंदर एक औरत की इद्दत गुजर सकती है भाई, यानी 2 महीने के अंदर, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि कम अज कम 39 दिन के अंदर एक औरत की इद्दत गुजर सकती है। इद्दत की कम से कम मुद्दत जो है इमाम साहिब के नजदीक वो 60 दिन है, यानी 2 महीने है, और साहिबैन के नजदीक कम से कम मुद्दत इद्दत की वो 39 दिन हो सकती है, यानी 1 + 40 भाई। इमाम साहब फरमाते हैं कि हैज की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 10 दिन है, इद्दत के अंदर 3 हैज आएंगे तो ये 30 दिन इन हैजों के हो गए, और तोहर की कम से कम मुद्दत 15 दिन है तो 3 हैजों के दरमियान 2 तोहर आ गए तो 15 और 15 30, तो 30 दिन तोहर के हो गए और 30 दिन 3 हैज के हो गए तो ये 60 दिन भाई। तो कम अज कम 60 दिन के बाद ये औरत आए फिर खावंद इसकी तस्दीक कर सकता है भाई। एक इद्दत तो कहां गुजारी है, इसी खावंद के पास, उसके बाद मजीद ये 60 दिन कम अज कम गुजार कर आए। और जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि कम से कम मुद्दत इद्दत की वो 39 दिन है, वो कहते हैं, वो फरमाते हैं कि हैज की कम से कम मुद्दत 3 दिन है, तो 3 हैज जो हैं उनकी मुद्दत हो गई 9 दिन, हर हैज 3 दिन का शुमार किया जाए तो 3 हैज 9 दिन के हो गए, और तोहर की कम से कम मुद्दत 15 दिन है तो ये 3 हैजों के दरमियान 2 तोहर आ गए तो ये 30 दिन दो तोहरों के हो गए और 9 दिन तीन हैजों के हो गए, तो ये 39 दिन बन गए भाई। तो ये कम से कम 39 दिन बाद ये औरत है, फिर ही इसकी बात का एतबार किया जा सकता है। तो साहिबैन ने हैज की भी कम से कम मुद्दत का एतबार किया और तोहर की भी कम से कम मुद्दत का एतबार किया, और इस तरह ये 39 दिन बनते हैं। जबकि इमाम साहब ने तोहर की तो कम से कम मुद्दत का एतबार किया लेकिन हैज की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत का एतबार किया और वो 10 दिन है भाई। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।